प्रातः क्लास चल रहा था 10/11/1966 गुरुवार को 12वें पेज के मध्यांक में बात चल रही थी। सन्यासी पवित्र तो बनते हैं, परंतु सर्वव्यापी कह करके बाप से भी मुख करते हैं, अपन को भगवान कह करके। अभी तो ये समझने की बात है ना बच्चे, अपन को कोई भगवान कहे और कोई बैठा हुआ हो बोले क्या ये हमारा अल्लाह है, क्या ये हमारा खुदा है, तो बच्चे वो भी गुस्से में आकर के उसको मार डाले। हम जिसको याद करते हैं उसको ये ऐसे कहते हैं, ये तो है ही पति दुनिया, भ्रष्टाचारी दुनिया। ये भ्रष्टाचारी अपन को कहते हैं हम अल्लाह हैं, जो पति तो पावन है, खुदा है, परंतु उन बुद्धुओं को बुद्धि तो है ही नहीं, कुछ भी इतना समझ नहीं सकते। नहीं तो ये बात बहुत खराब है, अपन को शिवो हम कहना, अल्लाह खुदा भगवान कहना, ये तो बहुत पाप है। एक तरफ में कहते हैं पति तो पावन है, गॉड फादर है, लिबरेटर है, और फिर कोई कह करके बैठ करके कहे कि मैं अल्लाह हूँ। अरे मनुष्य तो अपन को अल्लाह कह ही नहीं सकते हैं। सभी सेंटर्स के रूहानी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण सर्वोत्तम कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी मीठे मीठे सर्विसेबल वफादार फरमान बरदार बच्चों के प्रति मात पिता बाप दादा का गुरुवार के दिन याद किया। गुड मॉर्निंग। मीठी मीठी सिकील दे 5000 वर्ष के बाद फिर से आए मिले हुए, क्या करने के लिए मिले? वेद के बाप से फिर अपना घुमाया हुआ अखंड अटल सुख शांति मेरा भाग राज भाग रहने के लिए मिले, पुरुषार्थ करने के लिए। तो बच्चों के प्रति याद प्यार बाप दादा का मात पिता का स्वीकार नमस्ते भी कह सकते हैं, गुड मॉर्निंग अंग्रेजी अक्षर है, नमस्ते भी कह सकते हैं, क्योंकि बाप को तो नमस्ते ही करना पड़े, क्योंकि बाप तो है ओबीडिएंट सर्वेंट। देखो ये सभी जो भी हैं, सभी ओबीडिएंट सर्वेंट्स हैं बच्चों के। जो भी बाप हैं इनको जन्म दे, बाप ने जन्म दिया ना अभी, फिर उन बच्चों की संभाल कर करके उनको सब कुछ दे करके फिर जा करके वानप्रस्थ में बैठते हैं। तो वैसे ही ये रूहानी बाप भी कहते हैं, मैं भी ऐसे ही जन्म दे बच्चों को पालना कर, इस ज्ञान और योग बल से उनको गुलगुल बनाए, स्वर्ग का लायक बनाए, और फिर मैं जाकर के वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाऊंगा। अभी समझा, जैसे लौकिक में होता है वैसे पारलौकिक। ये हद के बाप हैं और ये बेहद का बाप, फर्क नहीं है। तो जैसे बाप सर्वेंट है, जैसे बाप कहते हैं आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट, सर्वेंट है क्यों, बुलाते हो ना, हे पतित पावन बाबा आओ, हम पतित बन गए हैं, जल्दी आकर के हमको पावन बनाओ। तो आना पड़े पतित दुनिया में, पतित शरीर में आना पड़े सेवा करने के लिए। तो देखो, ये सर्वेंट को क्या सोने की गद्दी चाहिए बैठने के लिए? नहीं, जब सेवा करके जाता हूँ तब, जब भक्ति मार्ग करते तब मेरे लिए बड़े बड़े महल बनाते हो ना। ये बड़ा मंदिर सोमनाथ का बनाते हो, और वहां मुझे बैठाते हो, यहां कहां बैठाते हो, और वहां कहां भक्ति में बैठाते हो। देखो कितना फर्क है। यहां पतित शरीर में और वहां शरीरों में तो आने का ही नहीं है, और फिर मैं तो एक ही दफा आता हूँ। फिर जब भक्ति मार्ग में जाते हो तो मेरे लिए बड़ा अच्छा मंदिर बनाते हो, क्यों? क्योंकि पैसे तो बहुत मिलते हैं ना, तो मंदिर भी ऐसा ही आलीशान बनाते हो, समझते हो ना? तो तुम लोग को ये फिर मंदिर बनाना है भक्ति मार्ग में, राजभाग की बात। पहले तो राज करना है, और ये तो जानते हो कि मंदिर कितने बनते होंगे फर्स्ट क्लास, घर घर में कितने बनते होंगे। और ये फिर समझते हो, हम जाकर के अपना अभी महल बनाएंगे वहां, अभी तो हम ये बाप से राज गद्दी ले रहे हैं, विश्व की बादशाही ले रहे हैं। तो ये बात तुम बच्चों की बुद्धि में चलनी चाहिए, ये तो समझते हो ना बच्चे। यहाँ भी शिव बाबा के हैं, और अभी हम विश्व के महाराज कुमार बनेंगे, तो राजाई के लिए बैठे हो ना। तो ये तो बुद्धि में चलना चाहिए स्टूडेंट को, हम अभी बाप से विश्व का महाराज कुमार बनेंगे, महाराज कुमारी बनेंगे। जितना हम पढ़ेंगे इतना ऊंचे पद पाएंगे, तो नशा चढ़ना चाहिए ना। ये नशा भूल नहीं जाना चाहिए, चढ़ा ही रहना चाहिए। पीछे तो भूल जाते हैं, भूल जाते हैं तो फिर चढ़ाना चाहिए। कम से कम सुबह में बैठ करके ये नशा रोज चढ़ाना चाहिए। अभी तो बाबा आपसे हम विश्व का महाराज बन करके ही छोड़ेंगे, आपको याद करते हैं और आपकी सर्विस करते हैं, ये आपसे बात करनी चाहिए। अच्छा, बच्चों को नमस्ते। ये छूटी हुई वाणी है प्रातः क्लास की, 5/11/66 शनिवार को 8वें पेज की 3री लाइन। बात चल रही थी तुम बच्चों की याद करते करते कर्मातीत अवस्था हो जाएगी और वर्षा मिल जाएगा। पीछे चलो जा करके थोड़ा ठहरना घर में, जब यहाँ सब कुछ सुख शांति हो जाएगी, सब ये क्लियर हो जाएगा, तब आना। क्या क्लियर हो जाएगा? कर्मातीत अवस्था हो जाने के बाद आत्माओं के घर जाने के बाद यहाँ ही सृष्टि में क्या क्लियर हो जाएगा? क्योंकि चैतन्य आत्माओं को ज्ञान सुना करके राजयोग की विधि बता करके सुधारा जा सकता है। आत्माएं संपन्न बनती है। नंबर वार आत्मिक स्थिति में स्थित होती है, कोई सजा खा के, कोई स्वेच्छा से, कोई पुरुषार्थ करके संपन्न बनने पर आत्माएं बाप के घर जाती है। फिर ठहरना किस बात का? आत्माएं मनुष्यों की ज्ञान से सुधरती है। बाकी इस सृष्टि में जो 5 तत्व रह जाएंगे विनाश काल में, वो तो बड़े तामसी हो जाएंगे। उन तामसी तत्वों को सतो प्रधान कैसे बनाया जाएगा? तो जड़ तत्व है, ज्ञान तो नहीं सुनेंगे। तो बोला, जब तक तुम्हारे योग बल से वो 5 तत्व भी पावन बनते हैं, क्योंकि तुम ही पावन बनाने के निमित्त हो, पांच तत्व पावन बनेंगे तो शरीर भी पावन बनेंगे। जैसे
लौकिक दुनिया में होता है। माँ के गर्भ में पहले 5 तत्वों का पिंड तैयार होता है या आत्मा आती है? पिंड तैयार होता है, बाद में जब पिंड परिपूर्ण हो जाता है तब उसमें आत्मा प्रवेश करती है। ऐसे ही ये 5 तत्व सात्विक स्टेज में स्थित हो जाए तुम्हारे योग बल से, तभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तब तो माना, किसमें आना? तुम्हारे जो शरीर बर्फ में दबेंगे, उन बर्फ में दबे हुए शरीरों में जब सात्विकता आए, जैसे कोई सड़ता हुआ फल बर्फ में दबा दिया जाए तो सड़ा हुआ हिस्सा पानी के साथ बह जाएगा और स्वच्छ हिस्सा रह जाएगा। तो ऐसे ही जब ये क्लियर हो जाएगा तब आना, आकर के राज्य करना। ये 5 तत्वों से जो बने हुए तुम्हारे तमो प्रधान शरीर हैं सात्विक बन जाएंगे, तब उनमें तुम्हारी आत्मा आएगी। इसमें क्या, आना भी तभी है तुम बच्चों को जब तुम्हारे शरीर के पंचभूत सात्विक बने। बाकी बीच में क्या होता है वो भी चल करके देखना, आगे चल करके। बने कब? संगम युग के तो 100 साल बताए थे, 2036 तक पूरे होते हैं। इन 100 सालों में जो पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्माएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा कितनी है? 100 माने शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करने वाली संपन्न आत्मा बनेगी बीज रूप आत्मा। उनकी संख्या कितनी? 4.5 लाख। तो वो 4.5 लाख आत्माएं संपन्न बनेंगी और संपन्न बनने पर उनका उद्धार होगा। उत्तम माने ऊपर, हर माने हरण करके ऊंची स्टेज में जाएंगी। और ऊंची स्टेज क्या है? ऊंचे से ऊंचा कौन है? ऊंच और नीचे कहाँ होता है? तो साकार सृष्टि के लिए बोला कि तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो सृष्टि पर परम धाम को उतारने वाले बच्चे नंबरवार होंगे, या एक जैसे होंगे? अव्वल नंबर भी कोई होगा है? तो कहाँ उतारेगा? परम धाम को जो परे से परे धाम है कहाँ उतारेगा? माउंट आबू में
है?
अच्छा, ये मन मन अनुभव किसने कहा? क्यों शिव ने? क्यों नहीं? शिव को मन नहीं है, मनुष्यों को मन होता है। मनुष्यों में मुख्य है मनुष्यों का बाप, जिसमें मुकर्रर रूप से वो अखूट ज्ञान धन वाला कौन? शिव प्रवेश करता है। तो जो अखूट ज्ञान धन वाला शिव है वो प्रवेश करके वो अखूट ज्ञान धन का वर्षा किसको देता है? ऐ बड़े बच्चे को देता है, जो परंपरा चली आ रही है सारी दुनिया में कि सभी बाप अपने बड़े बच्चे को हिस्ट्री में भी देखें, बड़े बच्चे को राजा ही देते आए। तो ये परंपरा शुरुआत कहाँ से हुई? संगम में सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो सारी परंपरा यहाँ से शुरू होती है। इसलिए गीता में भी लिखा है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। जो भी संसार में मनुष्य हैं वो मेरे रास्ते का अनुगमन करते हैं, तो मैंने ये रास्ता बनाया। क्या? कि जो भी बाप है वो अपना वर्षा अपने बड़े बच्चे को देकर जाए। तो बड़ा बच्चा ये कहने का हकदार हुआ क्या? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तेरे मन में क्या है? क्या है? हैं? नई दुनिया की स्थापना है पहले। अरे नई दुनिया की स्थापना भी तो तब होगी और वो ही कर सकेगा जो स्वस्थिति में सदैव टिका हुआ हो। क्या? और स्वस्थिति में टिकाने का रास्ता वो ही बता सकता है जो स्वयं स्वस्थिति में टिका हुआ हो। तो रास्ता बताने वाला कौन? रास्ता बताने वाली आत्मा कौन है? राम वाली आत्मा खुद ही पतित है, तमो प्रधान है, है? शिव बाप, बाबा नहीं। तो शिव जो है वो आत्माओं का बाप है, बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। ये ग्रैंडफादर आदि संबंध जो है वो इस षष्ठी पर जब वो आता है मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तब अनेक संबंध बनते हैं। तो उसे शिव बाबा नहीं कहेंगे, आत्माओं के बाप को क्या कहेंगे? शिव बाप। आत्मा आत्मा सब आपस में भाई भाई, उनमें बड़ा भाई आत्मा जो जन्म मरण के चक्र में आती हैं, उन आत्माओं के बीच में बड़ा भाई कौन हुआ? राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो जो राम बाप बड़ा भाई है उसके मुख से ये बात निकली, क्या? मत मना भव, मेरे मन में समा जा। और तेरे मन में क्या समाया हुआ है? क्या वो बाप ने मुरली में बताई दिया? बाबा कहने से तेरी बुद्धि में क्या बिंदी याद आवेगी? तू अगर बाबा कहेगा तो औरों की बुद्धि में बाबा कहने से साकार निराकार का मेल आएगा बुद्धि में, और तेरी बुद्धि में है क्या आएगा? बिंदी ही याद आवेगी। तो जो मन मना भव कहने वाला है उसकी बुद्धि में क्या है? है शिव बाबा है। तेरी बुद्धि में बिंदी ही याद आवेगी, तो तेरी बुद्धि में क्या है? बिंदी। क्या है? बिंदी है। और बाप भी यही कहते हैं, मैं जब आता हूँ तो तुम बच्चों को आप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाकर जाता हूँ। तो अव्वल नंबर वो बच्चा कौन हुआ जो बिंदी रूप में टिक जाती है? बताया, तुम्हारी यादगार बनती है द्वापर युग से भक्ति मार्ग में। क्या यादगार बनती है? पहले पहले शिवलिंग। जो शिवलिंग है वो तुम्हारी यादगार क्यों कहा? शिव की यादगार नहीं है? नहीं है? बाप समान बनता है। बाप थोड़े ही बन गया, बाप समान ही तो बन गया। शिव बाबा कहा शिवलिंग को भी क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में? शिव बाबा। इसका मतलब है उसमें साकार का रूप भी है और निराकार का रूप भी है। उसका जो सात्विक स्टेज का यादगार है वो द्वापर के आदि का सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ मंदिर है जिसमें लिंगाकार पत्थर और उसके बीच में क्या हीरा। तो लिंगाकार पत्थर तो बड़े रूप साकार की यादगार है, ये तो पक्का है। वो हीरा किसकी यादगार है? हैं? रामबली आत्मा की। क्यों? हाँ, हीरा जब कहा जाता है तो हीरो पार्टधारी है बुद्धि में आता है, और हीरो पार्टधारी जो है वो मनुष्य शक्ति में मनुष्यों के बीच कोई आत्मा है जो हीरो का हीरो पार्टधारी का पार्ट बजाती है। जो हीरो पार्टधारी का पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो ही आत्मा हीरा बनती है। शिव हीरा नहीं बनता है, क्योंकि हीरा कहो या कोई भी रतन कहो पत्थर होते हैं या नहीं होते हैं? हैं? तो शिव पत्थर बुद्धि बनता है क्या? शिव कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनता। कौन बनता है? जो भी आत्माएं हैं मनुष्य आत्माएं अच्छे से अच्छा पार्टधारी हो सात्विक स्टेज में, तो वो भी तामसी स्टेज में पत्थर बुद्धि बन जाती। उन पत्थर बुद्धियों में देह अहंकारियों में सबसे बड़ा देह अहंकारी कौन है? वो राम वाली आत्मा। बड़े से बड़ा पत्थर बुद्धि माना बड़े से बड़ा देह अहंकारी। जो बड़े से बड़ा देह अहंकारी है उसमें आत्मा रही या नहीं रही? आत्मा है, ये क्यों कहा? अगर शिव नहीं है तो क्या है? है? शव है। ये किसके लिए कहा? है? कलयुग के अंत में शिव बाप के प्रवेश करने से पहले वो आत्मा क्या बन जाती है? है? शव बन जाती है, मुर्दा बन जाती है। मुर्दे में कोई बात बुद्धि में बैठेगी? है? कोई बात बुद्धि में नहीं बैठती। मना जो हीरो पार्टधारी आत्मा है, शिव बाप जब आते हैं तो उसका शरीर देह देह शिव बाप को मिलता है। वो विकारों की दलदल में पूरा ही डूब जाती है। जो बोला तुम बच्चे जब विकारों की दलदल में पूरा ही डूब जाते हो तो मैं चोटी पकड़ करके खींचता हूँ। क्या पकड़ करके? चोटी। चोटी में क्या होता है? बाल होते हैं। बालों में खून होता है? है? बालों में खून होता है? नहीं। संकल्पों का खून है ही नहीं, ना अच्छे संकल्प ना बुरे संकल्प। क्या हो गया? है? पूरा पत्थर बुद्धि हो गया। जैसे आज के वैज्ञानिक हैं, क्या करते हैं? ऐसा कौन सा पत्थर बुद्धि का काम करते हैं? वो देह अहंकारी हैं या नहीं? है? देह अहंकार तो है। देह अहंकार इतना ज्यादा है तो उन्हें यही भूल जाता कि हम जो चीज बना रहे हैं एटमिक एनर्जी, उस एटमिक एनर्जी से हम स्वयं भी नष्ट हो जाएंगे। ये ध्यान रहता है? नहीं रहता। लेकिन बनाते हैं, बनाते हैं ना। उनका भी कोई बाप होगा कि नहीं? है? कौन है? क्या गायन है? हर हर बम बम। क्योंकि वो जो निर्माण करते हैं एटमिक एनर्जी का, उनमें ये ताकत ये हिम्मत नहीं है कि उस एनर्जी को विस्फोट कर सके। दूसरे विश्व युद्ध में तो छोटी छोटी बम्बियां थी 20-20 मेगावाट की, तो छोड़ बैठे। उनसे कोई दुनिया का विनाश तो होने वाला नहीं था, दो शहरों का विनाश हो गया। और अभी अभी तो हजारों हजार मेगावाट के बम्ब तैयार हुए पड़े हैं कई देशों में। अगर एक ने जरूरत की तो दूसरा देश चुपचाप नहीं बैठेगा, तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। तो उनमें हिम्मत नहीं है कि वो छोड़ दे। तो वो हिम्मत कहाँ से आएगी? है? हिम्मत आएगी तब जो बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन चुका है, जितने भी रत्न हैं उन रत्नों में सबसे कड़ा पत्थर कौन सा होता है? हीरा। कड़े से कड़ा पत्थर बुद्धि ग्रेनाइट से भी ज्यादा कड़ा पत्थर बुद्धि बन जाता है, तो वो अपनी चिंता नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि में तो बैठ जाता है संपन्न आत्मा बन जाने के कारण। याद की स्थिति में प्रैक्टिस करते करते ये पक्का हो जाता है कि मुझे आत्म की स्थिति छोड़नी नहीं है, पक्की आत्म की स्थिति बनती है। और वो पक्की आत्म की स्थिति वाला अपने शरीर को छोड़ करके उन धर्म पिताओं में प्रवेश कर जाता है, उन एटमिक एनर्जी बनाने वाले जिनकी जिनके हाथ में वो चाबी है उनमें भी प्रवेश कर जाता है और उनकी बुद्धि को ऐसा घुमाता है प्रेरणा दे करके तो वो विस्फोट कर देते हैं, काम पूरा हो जाता है। एटमिक एनर्जी का जब विस्फोट होता है चतुर्थ विश्व युद्ध में तो 5-7 रोज के अंदर ये सारी दुनिया खलास हो जाती है, ये पृथ्वी पूरा ही डोल जाती और बड़े बड़े भूकंप आते हैं जिन भूकंपों से दुनिया की बड़े से बड़ी आबादी नष्ट हो जाती है। एटमिक एनर्जी गर्मी लाएगी कि नहीं दुनिया में? दुनिया में गर्मी होगी तो समंदर का पानी क्या होगा? बॉइल्ड वाटर बन जाएगा और वो भाप बनकर ऊपर उड़ेगा। और समंदर का पानी भी कैसा? जो गर्मी भयंकर पड़ती है दुनिया में उस समय ओजोन फटता है, अभी भी फट रहा है। ओजोन फटने से दुनिया में गर्मी बढ़ती है तो नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं वो सब दरक जाते हैं, टूट करके समंदर में आ जाते हैं। तो समंदर का स्तर ऊंचा जाएगा नीचा जाएगा? ऊंचा जाएगा। दूसरी तरफ पृथ्वी पावरफुल ग्रह है, धरणी जब डोलती है, धरणी माता है, तो उसका उपग्रह भी डोलेगा या नहीं डोलेगा? कौन सा उपग्रह? चंद्रमा भी इतना डोलता है कि वो जहां से निकला था, उपग्रह है ना, जिस प्रशांत महासागर से निकला था उसी में अटैच हो जाएगा। तो प्रशांत महासागर का जल चंद्रमा के अटैच होने से और ऊपर उठेगा या नीचे जाएगा? तो सारी दुनिया में जलमयी हो जाती है। जब सारी दुनिया में ऐसी जलमयी होने लगती है थोड़े से जीव जंतु बचते हैं। आपने देखा होगा नदियों में कोई प्राणी है जो उल्टी धार चलता है, कौन सा प्राणी? सांप। और दुनिया के बड़े से बड़े सांप कौन है? वो तो राजा है, उसकी प्रजा भी तो होगी, यथा राजा वो कौन है? अरे वासुकी नाग का पार्ट किसका है? जो वासुकी नाग शंकर के गले में पड़ा हुआ है, अच्छी तरह से गला पकड़ लिया, गले पड़ गया, किसका पार्ट है? हाँ, कृष्ण वाली आत्मा का पार्ट है। तो वो कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा के रूप में जो पार्ट बजाती है उसकी गोद में हर धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं ब्राह्मण बनकर के खेलती हैं या नहीं खेलती हैं? अभी भी खेल रही है। तो वो सारे ही ब्राह्मण आधार मूर्त जड़ें भी हैं और जड़ों के बीज भी होंगे, तो बीजों की संख्या कितनी है? 4.5 लाख। वो जो 4.5 लाख बीज हैं, वो दुनिया के सबसे सशक्त बीज हैं। और बच्चे किसके हैं? वो बीज बीज के ही बच्चे होंगे। जो राम बाप बीज है उसी के बच्चे हैं, जो रुद्राक्ष के रूप में दिखाए जाते हैं, अक्ष माने आंख। क्या उनकी आंखें जो हैं, उनके नाम पर रुद्राक्ष नाम पड़ा है। रौद्र रूप धारण करते हैं, भयंकर रूप धारण करते हैं और सारे यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। जो बोला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में आखिरी आहुति किसकी लगेगी? नहीं, सारी दुनिया की आखिरी आहुति लगेगी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में। सब स्वाहा हो जाएगा, कुछ भी बचने वाला नहीं है। तो वो रुद्र जो बच्चे हैं, वो ही दुनिया के सबसे बड़े नाग हैं। विकारों में बड़े से बड़ा विकार कौन सा है? काम विकार। और काम विकार भोगने में भारत के राजाएं सबसे आगे गए या दूसरे देश के धर्म पिताएं आगे गए? भारत के राजाएं सबसे आगे गए। बहुत विकारी बने, ढेर की ढेर रानियां रख करके। तो जो राजाओं का ये हाल है, उससे साबित हुआ कि बड़े बड़े सांप किस देश में हुए? भारतवासी। वो भारतवासी सांप जिनमें ये ताकत है कि नदी की धारा को उल्टा चीर करके चले जाते। तो जब जलमयी होगी सारी दुनिया में, उस समय कौन से प्राणी जीवित रहेंगे? जलमयी में सब खलास हो जाएंगे। क्योंकि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ में मिट्टी अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है या नहीं हो जाती है? यहाँ बेहद की मिट्टी क्या है? देवानी की। जो बेहद की मिट्टी है वो सारी दुनिया में मनुष्य मात्र में रग रग के रग रग में भर जाती है। ऐसी स्थिति में सब प्राणी खलास। कौन बचते हैं? हैं? वो ही सर्प। वो सर्प फिर भी बचे रहते हैं मनुष्य रूप में, लेकिन उनमें गुण कौन सा है? हैं? सर्पों का गुण ज्यादा है। तो बताया, सारी दुनिया में जब जलमयी हो जाएगी, समंदर का स्तर बहुत ऊंचा उठ जाएगा, तो कौन सा देश बचेगा? भारत देश बचेगा। क्यों? दुनिया में और जो देश हैं, उनकी जमीन समुद्र तल से जितनी भारत की ऊंचाई है, उत्तर भारत या दक्षिण भारत तो चलो फिर भी डूब जाता है पहले ही, जो उत्तर भारत है वो उतनी ही ऊंचाई पर है लगभग जितने और देशों में ऊंचाई है। वहां पहाड़ नहीं है क्या? और देशों में पहाड़ हैं या नहीं? है तो, लेकिन हिमालय जैसे पहाड़ कोई देश में इतने ऊंचे नहीं। तो जहां ऊंचाई ज्यादा होगी वहां समंदर का स्तर है नहीं पहुंच पाएगा, और उसमें भी जितने भी पहाड़ हैं उनमें हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, और हिमालय पहाड़ पर भी ऊंचे से ऊंची चोटी कौन सी है जो दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है? एवरेस्ट एवर ईस्ट माने जो पूर्वी सभ्यता है, एक होती है पाश्चात्य सभ्यता और एक है पूर्वी सभ्यता। तो पूर्वी सभ्यता को फॉलो करने वालों में एक ऐसी चोटी है जो बहुत ऊंची है, उसके लिए बोला कि तुम जब पूरे ही डूब जाते हो, क्या जितने भी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले सर्प हैं वो सर्प डूब गए, फिर क्या बचेगा? ऊंचे से ऊंची चोटी बचती। तो जो एवरेस्ट माने पूर्वी सभ्यता को विशेष फॉलो करने वाली आत्माएं हैं, असल सूर्यवंशी, वो बचेंगे। और उनमें भी कौन बचेगा? जो गीता में लिखा है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, सत्य का इस दुनिया में कभी अभाव नहीं होता, और जो असत्य है वो रह नहीं सकता हमेशा। असत्य माने सत्य नहीं है। दूसरे धर्म खंड सत्य है या भारत खंड सत्य है? तो भारत खंड रहता है, दूसरे धर्म खंड जो असत्य है वो नहीं बचेंगे। इसी तरह जो मनुष्य सृष्टि में वो आत्मा कौन है जिसके लिए शास्त्रों में भी गायन है कि वो एक सत्य जरूर रहता है, कौन है? शंकर के लिए कहते हैं कि उसका जन्म देने वाला कोई माँ बाप नहीं, उसकी मृत्यु होते हुए किसी ने देखा नहीं। वो मृत्यु होते हुए क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो कालों का काल है, महाकाल है, सारी दुनिया को काल के गाल में ले जाने वाला, परंतु उसको काल के गाल में ले जाने वाला कोई भी नहीं है। बेहद में क्या अर्थ है इसका? है अनिश्चय रूपी मृत्यु में सारी आत्माएं अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि माया, और माया ने जिससे हाथ मिलाया वो धरणी प्रकृति, ये दोनों बड़ी पावरफुल है। माया इतनी पावरफुल नहीं है, क्यों? क्योंकि माया बाप के बच्चों के सामने थक चुकी, तंग आ गई, ऐसे अव्यक्त वाणी में बोला, और फिर बाद में शरीर भी छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया तो फिर माया ज्यादा चालाक है या जड़ प्रकृति ज्यादा चालाक है? माया ज्यादा चालाक है। तो माया बेटी जो है वो बाप की बेटी है ना, है? माया क्या है? बाप की बेटी है। तो जो बाप की बेटी है ज्यादा चालाक होने की वजह से उसने ये युक्ति निकाली कि जो बहुत पावरफुल रचना है प्रकृतिपति की, भगवान की, उसको हाथ में दे दो। तो उसने जो पृथ्वी जिसमें पांच तत्व विराजमान है, मुख्य तत्व है पृथ्वी, धरणी माता, उससे हाथ मिला लिया। धरणी माता कौन? जगत की अम्बा,
उससे हाथ मिलाने के बाद प्रकृति और माया दोनों मिलकर के इतने पावरफुल हो जाते हैं कि सारी दुनिया पर राज्य करते हैं। क्या जो सिखों में आज भी गायन है, राज करेगा खालसा, वो धरणी जब बहुत तामसी बन जाती है तो महाकाली का रूप धारण करके सारे असुरों का खात्मा कर देती है, राक्षसी वृत्ति वालों का। अभी कौन सा राज्य चल रहा है? रावण राज्य, यथा राजा तथा प्रजा। तो सभी रावण राज्य में हैं या रावण राज्य से कोई बाहर है? तो सबके गले काटेगी, सबको अनिश्चय बुद्धि बनाएगी, या कोई कोई को बनाएगी, कोई कोई को नहीं बनाएगी? है रुद्रमाला के मणकों को है, उनको भी बनाएगी, फिर बचेगा कौन? है एक क्यों बचेगा? हाँ, जो प्रकृति पति है वो किसी के प्रभाव में आने वाला नहीं है। सब धर्म पिताएं इस शक्ति में उतरते हैं, तो जब उतरते हैं तब सत्व प्रदान होते हैं, लेकिन जिसमें प्रवेश करते हैं उसके संग के रंग में आकर नीचे गिरते हैं या नहीं गिरते हैं? प्रभावित होते हैं या नहीं होते हैं? लेकिन वो सारी सृष्टि की माँ है ना? माँ है या नहीं है? जगत माता है ना? तो जगत माता है, जिसे जगत माता कहा जाता है, वो जगत पिता की पत्नी है या नहीं है? है जगत पिता की पत्नी है। तो पहली रचना है या बीच की रचना है या लास्ट की रचना है? पहली रचना है ना। तो जो पति है प्रकृति का, वो अपनी एड़ी चोटी की सारी पावर लगा करके उसको तैयार करता है या नहीं? तो ज्यादा पावरफुल बनती है या नहीं? ज्यादा पावरफुल बनती है, इसीलिए सबको खलास कर देती है। सर्प के बारे में ये जानते होंगे बहुत से लोग कि सर्पिणी जब अंडे देती है तो उसकी कुंडली के अंदर जितने बच्चे आ जाएंगे वो उन सबको खा जाती है। हाँ, तो बड़बोली तो है ही, और आज की दुनिया में जो बड़े बड़े नेताएं हैं जोर जोर से बोल बोल करके सारी पब्लिक को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, उन सब नेताओं में मुखिया नेता कौन हुआ? जगदम्बा। उससे ज्यादा लंबी जीव वाला और कोई हो ही नहीं सकता। पंडित सोई जो ही गाल बजाबा, ये कलयुगी दुनिया की रस्म है। क्या लोग किसको पंडित समझते हैं? जो बहुत ज्यादा बोलने वाला हो उसको लोग समझते हैं ये बहुत पंडित है, और जो चुपचाप रहता है कम बोलता है ये बुद्धू है, तो कुछ नहीं जानता। तो सारी प्रकृति उससे, वो प्रकृति से सारे ही बच्चे प्रभावित हो जाते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे प्रभावित हो जाते हैं, माने बाप से अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। जो बाप से अनिश्चय बुद्धि होते हैं, बाप के बड़े बड़े सहयोगी होते हैं, उन सहयोगी रूपी भुजाओं को वो अपने कमर में बांध लेती है। क्या? अपनी कमर की लज्जा बचाने के लिए क्या करती है? जो सहयोगी भुजाओं वाले बच्चे हैं, लंबी लंबी भुजाओं वाले, अर्जुन को दीर्घ बाहु कहा गया ना, तो बड़े बड़े सहयोगियों को अपने पक्ष में करके अपनी जो कमजोरी है उसको छुपा लेती है और बाप को बदनाम कर देती है। क्या? बाप को बदनाम कर देती है। किसके बीच? बच्चों के बीच। तो कितने बच्चे हैं प्रकृति के? पांच सौ को, अरे 4.5 लाख तो हैं। जब जगदम्बा है तो 4.5 लाख ही बच्चे हैं। सारा जगत उसके बच्चे हैं। तो सबको नंश बुद्धि बनाती है और अंत तक बनाती रहेगी। क्या? कहाँ तक बनाती रहेगी? अंत तक बनाती रहेगी। अभी तो शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है। इस रिहर्सल के लिए शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा ने 4 बार ब्राह्मणों की दुनिया की सृष्टि रची, लेकिन 3 बार पसंद नहीं आई और 3ों बार उस सृष्टि को नष्ट कर दिया। शूटिंग होती है, देखने में आता है। ओम मंडली जो ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई वो 36-37 में रची गई और 42-45 के बीच में ध्वस्त हो गई। हुई या नहीं हुई? फिर दूसरी सृष्टि रची 47 में। पहली सृष्टि नेस्त नाबूद हो गई ओम मंडली और दूसरी सृष्टि का नाम पड़ा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ब्राह्मणों की सृष्टि थी ना, वो सृष्टि भी ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद विघटन होना शुरू हो गई। प्रूफ मुरली में दिया, द्वापर युग से जब और धर्म आते हैं, धर्म पिताएं आते हैं, तो अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर लेते हैं। अरब देश अलग हो गया, भारत देश अलग हो गया। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा कुमारियों ने, जो ब्रह्मा बाबा के समय में सारे देश के सेंटर्स का संचालन माउंट आबू से होता था, वो ब्रह्मा कुमारियां आपस में भिड़ गई और उन्होंने अपने अपने जोन अलग अलग कर लिए, जोनल इंचार्ज बन गए। यज्ञ की हिस्ट्री उठा के देख लो, बयालीस में ओम मंडली का जो कर्ता धरता था मुखिया आ माने ब्रह्मा, ऊ माने विष्णु, मा माने महेश, उन तीनों में बड़ा कौन? महेश जो कर्ता धरता था उसकी लाश भी गुम कर दी, खलास हो गया। तो जब मुखिया ही चला गया तो ओम मंडली रहेगी? खत्म, वो ब्राह्मण की शक्ति खलास कर दी ना। शास्त्रों में यही तो आया है कि ब्राह्मणों की 3 शक्ति रची गई जो खलास कर दी, पसंद नहीं आई। दूसरी शक्ति रची 47 में ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। वो 69 में शरीर छूट गया ब्रह्मा का, तो विघटन शुरू हो गया। रिजल्ट सामने आया कि अपना अपना जोन ब्रह्मा कुमारियों ने अलग अलग कर लिया, विघटन हुआ कि नहीं? विघटन हुआ। वो विघटन उसकी लास्ट स्टेज जो है उसकी भी घोषणा मुरली ने कर दी। क्या? 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। 66 की मुरली में बोला। तो 76 में क्या हुआ? ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय विघटन को प्राप्त होने लगा और एडवांस पार्टी शुरू हो गई। क्या? मुखिया भी प्रत्यक्ष हो गया, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया 76 को। तो मनुष्य सृष्टि का बाप कौन? वही जगत पिता। उसके प्रत्यक्ष होने पर कैसे प्रत्यक्ष होना? आप मुए मर गई दुनिया, उस पुरानी ब्राह्मणों की सृष्टि से उसने अपना मोह तोड़ लिया। जैसे कि पुरानी दुनिया खलास हो गई, ब्राह्मणों की दुनिया खलास हुई और नई दुनिया ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी शुरू हो गई, जिसे रुद्र वत्सों की दुनिया कहे। महाकाली की बात उस समय नहीं है, अभी 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 प्रसंगांतर न करो, दूसरी बात चल रही है ना। तो ये तीसरी बार सृष्टि हुई शुरू ब्रह्मा द्वारा, और दूसरी बार रची हुई सृष्टि खलास हो गई। खलास हुई या नहीं हुई? हुई। तीसरी ब्राह्मणों की सृष्टि शुरू हुई, उसके लिए भी ये मुरली में बोल दिया, तुम बच्चों को। किनसे कहा तुम बच्चे? रुद्रमाला के मंडपों से कहा तुम बच्चे। तुम बच्चों को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो बताओ कब पूरे होते हैं? है 2017-18, क्योंकि 76 था बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, 77 था संपूर्णता वर्ष। तो 2017-18 का जो टाइम है वो है तीसरी जो ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई वो भी खलास। अभी टाइम चल रहा है, वो ही टाइम चल रहा है जो रुद्रमाला की दुनिया में 98 में भूकंप आया था। क्या? आधा विनाश हुआ था, 40-50 सरेंडर हैंड्स भाग गए, अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई, परीक्षा सदाकाल की होती है या थोड़े समय की होती है? थोड़े समय की परीक्षा हुई, भागने वाले भाग गए, परीक्षा हो गई, ठहरने वाले ठहर गए। द्वापर के अंत में क्या होता है? ब्राह्मण। वो त्रेता के अंत में क्या होता है? द्वापर की शुरुआत में आधा विनाश होता है। तो शूटिंग हुई कि नहीं बीज रूप आत्माओं की दुनिया में? ऐसे ही जब ये शूटिंग हुई उस समय तिथि तारीख देखी जाए 15 अगस्त जन्माष्टमी का दिन था, जिसके लिए शास्त्रों में लिखा है कि कृष्ण भगवान ने गीता कब सुनाई?
महाभारत युद्ध कब हुआ? द्वापर के आज में, द्वापर के अंत में, द्वापर के अंत में। तो महाभारी महाभारत युद्ध हुआ और कृष्ण के द्वारा कराया गया, तो कृष्ण का जन्म भी हुआ होगा? नहीं, द्वापर के अंत में कृष्ण का जन्म हुआ होगा कि नहीं हुआ? तो उसकी शूटिंग हो गई। कहते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं उनका दो जन्म होता है, एक जन्म माँ के पेट से और दूसरा जन्म जब यज्ञोपवीत धारण करते हैं, ज्ञान के तीन सूत्र धारण करते हैं। तीन सूत्र कौन से? ब्रह्मा का सूत्र, विष्णु का ज्ञान सूत्र और शंकर का ज्ञान सूत्र, जिसे कहते हैं त्रिमूर्ति रोड। रोड माने रास्ता, त्रिमूर्ति हाउस। तो ये तीनों जो ज्ञान के सूत्र हैं, उनकी जहाँ गांठ लगाई जाती है उसको कहते हैं ब्रह्म फांस। क्या? जो ब्रह्मा नाम के हैं वो सब एक गांठ में फंस गए। तो जो ब्रह्मा बनते हैं वही क्या बनते हैं? विष्णु। विष्णु बने तो पांचों ब्रह्मा नामधारी एक गांठ में बंध गए या नहीं बंध गए? हैं? बंध गए। तो बताया कि जो आधा विनाश होता है द्वापर के अंत में, उस समय कृष्ण का भी जन्म होता है और कृष्ण जन्म की यादगार 15 अगस्त और जन्माष्टमी एक ही तारीख को हुए। जो कृष्ण वाली आत्मा है वो डबल छुटकारा पा लेती है। एक तो ये दुनिया ही जेल है, दुनिया का बंधन में रहना, समाज के बंधन में रहना क्या है? जेल है। और दूसरे दूसरे है नहीं, जो अज्ञानता का बंधन है उससे भी मुक्त हो जाती है। ज्ञान गर्भ कहते हैं ना, तो ज्ञान गर्भ से जब बाहर आई तो जन्म हुआ, बाहर की दुनिया से भी मुक्त और अंदर के संकल्पों के संघर्ष से भी मुक्त। माने पक्का निश्चय बैठता है, जन्म माने पक्का निश्चय बुद्धि। और दुनिया के बंधन से मुक्त माना पहले समाज के अंदर प्रत्यक्ष थी तो बंधन था, फिर बाद में क्या होता है? जो दुनियावी समाज है उसकी दृष्टि से ओझल हो जाती है या समाज के सामने प्रत्यक्ष रहती है। जो अव्यक्त वाणी में बोला, दुनिया कहती है कि ब्रह्मा कुमारियों के बाबा गुप्त हो गए, और बाप कहते हैं बच्चों के सामने बाप दादा जब चाहे गुप्त नहीं है, प्रत्यक्ष हैं। तो बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए, माने जो ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हो गए और दुनिया वालों की नजरों से गुप्त हो गए। तो समाज का जो बाहर का बंधन है उससे मुक्त हुए या नहीं हुए? हैं? और अज्ञान के बंधन से भी मुक्त हो गए अगर निश्चय बुद्धि है पक्का। तो इस तरह पहला जन्म हुआ ब्राह्मण का, पहला पत्ता कौन? कृष्ण। वो पहले पत्ते का जन्म हुआ और वो पहला पत्ता जो कृष्ण है तो संगम युग में अकेला पार्ट बजाता है या किसी आत्मा के साथ साथ पार्ट बजाता है? जो राम वाली आत्मा है, जो शंकर है, उसके मस्तक में चंद्रमा दिखाते हैं, अधूरा है या संपूर्ण? अधूरा क्यों? अधूरा इसलिए कि उसकी बुद्धि में ये बात पक्की नहीं बैठी है कि मुझ आत्मा का बाप कौन है, और इस सृष्टि पर वो बाप साकार भी है या सिर्फ निराकार है। ये बात बुद्धि में नहीं बैठती, इसलिए अधूरा चंद्रमा है, संपूर्ण चंद्रमा नहीं है। लेकिन वो अधूरा होते हुए भी धर्म की धारणाओं का राजा आत्मा है या नहीं है? राजा है। वो मस्तक पर बैठा हुआ अधूरा चंद्रमा जो राजा है वो अधूरा है, इसलिए सब बच्चों को देखता है। क्या कि कौन कौन कैसा कैसा पार्ट बजाते, उसकी नजर में सब कुछ है। साकार में था तो नजर इतनी तीखी नहीं थी, क्योंकि साकार शरीर का बंधन था, और अभी साकार शरीर का बंधन नहीं है, तो वो आत्मा सब कुछ देखती है। लेकिन धर्मराज के रूप में अभी प्रत्यक्ष नहीं है, कभी तो संपूर्ण बनेगी, नहीं बनेगी? जब संपूर्ण बनेगी तो वो आत्मा धर्मराज का रूप धारण कर लेती है। वो धर्मराज का रूप ब्रह्मा वाली कृष्ण वाली आत्मा ऐसा रूप धारण करती है भयंकर, कि जो बच्चे नहीं सुधरना चाहते हैं, नहीं सुधरते हैं, गांठ बांध ली है, उनको भी सुधरना ही पड़ता है। एक एक की खामी को जानती है वही आत्मा जिसने बहुत सहन किया था माता के रूप में। क्या नहीं किया था? सहन किया। सहन किसी बच्चे को कराया नहीं, स्वयं किया, दूसरों से आशा नहीं की कि करो या न करो। वही आत्मा जिसने इतना सहन किया कि प्राणों की भी आहुति दे दी, उसका हिसाब किताब कब पूरा होगा उन बच्चों से? हिसाब किताब पूरा होगा या नहीं होगा? तो वो धर्मराज बनकर के सारा हिसाब, चाहे बेसिक नॉलेज के बच्चे हो, चाहे एडवांस नॉलेज के बच्चे हो, सबसे अपना हिसाब किताब पूरा करती है। बाकी बाप तो प्यार का सागर है, धर्मराज मार का सागर है। जो मुरली बोला, तुम बच्चे अभी मेरी बात नहीं मानेंगे तो धर्मराज तुमको बहुत तंग करेंगे। तो वो आत्मा संपूर्ण बनती है जो मुरली में बोला है, बाप का जन्म और बच्चे का जन्म इकट्ठा है, अलग अलग है या एक साथ है? एक साथ है। वो टाइम कौन सा है? हाँ, महाशिवरात्रि तो है, लेकिन कौन सा टाइम है? हाँ, तो साकार में जो आत्मा है राम वाली आत्मा, जिसमें वो चंद्रमा प्रवेश है, वो चंद्रमा और राम वाली आत्मा दोनों मिलकर के एक साथ प्रत्यक्ष होते हैं सच रूपी रंगमंच पर। बाप भी और बाप का बच्चा पहला पत्ता भी, दोनों प्रत्यक्ष जब होते हैं तब ब्राह्मणों की तीसरी सृष्टि का विनाश होता है, पूरी ब्राह्मणों की सृष्टि का विनाश। क्या मर जाते हैं, शरीर छोड़ जाते हैं?
अरे 70 में शरीर छोड़ गए थे क्या? नहीं छोड़ा था। ऐसे ही शरीर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बाप से अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ऐसी माया कड़ी परीक्षा लेगी फाइनल पेपर में। कैसी? जैसी अर्धविनाश में 98 में 40-50 सरेंडर बच्चों के साथ परीक्षा हुई और वो अनिश्चय बुद्धि होकर के भाग गए। तो रुद्रमाला के आधे मन के अगर भाग जाएं तो क्या पूरे अनिश्चय बुद्धि नहीं हो सकते है? सारा समाज अपोजिशन में खड़ा हो जाए। सारी गवर्नमेंट अपोजिशन में खड़ी हो जाए। सारा माहौल अपोजिशन का बन जाए। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या नहीं है? है? बिना समाज के रह सकता है? इसलिए सबको महाकाली अनिश्चय बुद्धि बनाती है। वो परीक्षा का प्रारूप होने वाला है। अरे सारी रामायण खत्म हो गई है? सीता का बाप रावण ही बना रहा, नहीं पता चला? चल गया। चलो तो जब सारे ही अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं तो उन्होंने सत्य ज्ञान को पूरा धारण किया है 100% या नहीं किया है? जो सत्य बाप का सत्य ज्ञान है, सत्य जिसे ज्ञान कहा जाता है, जानकारी, वो धारण किया है? नहीं धारण किया। ज्ञान की पूरी धारणा न होने के कारण ही समस्याओं से मुकाबला नहीं कर सकते और माया के फाइनल पेपर में फेल हो जाते हैं। ये तीन बार ब्राह्मणों की शक्ति जो है नष्ट होती है, चौथी बार शक्ति का विनाश नहीं हुआ, क्योंकि तीसरी बार जो विनाश हुआ, वो दूसरी बार जो विनाश हुआ 76 में है, उसमें दो ही आत्माएं निकलती हैं, जिनके निकलने के बाद टू लेट का बोर्ड बता दिया। क्या 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया में नई दुनिया की स्थापना होगी और टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। कितनों के लिए? दो के लिए लग गया। अब जो तीसरी बार विनाश होता है, क्योंकि दो से तो राजधानी स्थापन नहीं होती है, होती है? नहीं होती है। राजधानी स्थापन होने के लिए ज्यादा चाहिए, ठीक है, छोटी से छोटी राजधानी स्थापन होती है। उसमें ऐसे बंदे चाहिए फाउंडेशन में जो 100% कंप्लीट हो, पक्के सूर्यवंशी हो, बिल्कुल धर्मराज की सजा खाने वाले न हो। तो ऐसी आत्माएं 8 प्रत्यक्ष होती है। क्या भले उन 8 आत्माओं को भी माया डाउन कर देती है। माया किसी को छोड़ती नहीं। किसको छोड़ती है? किसको है माया? किसको छोड़ती? मायापति के ऊपर उसका कोई बस नहीं चलता, प्रकृति का भी कोई बस नहीं चलता। मायापति के ऊपर बस क्यों नहीं चलता? मायापति के ऊपर बस इसलिए नहीं चलता कि माया है अज्ञानी क्या, और मायापति है ज्ञानी, इसलिए अज्ञानता के कारण माया उसको जीत नहीं सकती। और प्रकृति जो जगत माता है, जगत माता का बस क्यों नहीं चलता है? क्योंकि जगत माता जड़त्वमयी बुद्धि वाली है, माया ज्यादा बुद्धिमान है या जगदम्बा ज्यादा बुद्धिमान है? माया बुद्धिमान है, जगदम्बा बुद्धिमान नहीं है। अगर जगदम्बा बुद्धिमान होती तो 2500 वर्ष जगदम्बा का राज कहा जाता, माया का राज नहीं कहा जाता। लेकिन देखते हैं कि जो बड़े से बड़ी माता है वो सबसे जास्ती दुनिया में बंधन में आ जाती है। तो जब बड़े से बड़ी माता बंधन में आ जाती है तो जो नंबरवार माताएं हैं उनका क्या हाल होगा? वो सब बंधन में आ जाती है। तो ये दूसरा जन्म होता है, जबकि अव्यक्त वाणी में भी इशारा दे दिया कि बाप दादा ने बच्चों को सारी प्रॉपर्टी दे दी, अपने पास कुछ भी रखा नहीं। कब तक दे दी? संचेतक तक है, संचेतक तक सारी प्रॉपर्टी नहीं दे दी? अरे नहीं दे दी, क्योंकि टीचर के रूप में, सुप्रीम टीचर के रूप में जो टीचर का काम है व्याख्या देना, प्रोज और पोएट्री की व्याख्या देता है, वो काम तो शुरू नहीं हुआ। हमारी पोएट्री क्या है? कविता है, हमारी मुरली गीता माता है। जिस गीता माता के लिए वाणी में बोला अभी गीता ज्ञान कहेंगे, गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। तो गीता का ज्ञान तो मिला लेकिन वो अमृत, गीता का वो रूप जो अमृत बन जाता है वो ब्राह्मण बच्चों को नहीं मिला। जिस अमृत को पी करके ब्राह्मण संपूर्ण क्या बन जाते हैं? अमर बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं। 76 के बाद ये प्रक्रिया शुरू होती है। क्या गीता का व्याख्या, उसे गीता कहो वेदवाणी कहो, क्योंकि वेदों का भी जो अव्वल नंबर रूप है वो गीता है। पहले गीता बनी या वेद बने? है पहले गीता, बाद में वेद। वेदवाणी ब्रह्मा के मुख से निकली, तो वेदवाणी जो ब्रह्मा के मुख से निकली वो हो गई हमारी मुरली। और वो वेदवाणी की आज क्या हालत है? कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं सुनता। कोई इस पर तवज्जो नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो ऋचाओं के अर्थ है एक दूसरे से तालमेल कोई नहीं लगा पाता। तो बताया कि गीता का तालमेल, वेदवाणी का तालमेल तब लगाया गया जब वेदों की व्याख्या हुई, आरण्यक लिखे गए जंगलों में बैठ करके, शतपथ ब्राह्मण आदि लिखे गए और उनकी भी व्याख्या निकली, उपनिषद लिखे गए और उपनिषदों की भी व्याख्या निकली, पुराण निकले, जिन पुराणों में बड़े से बड़ा पुराण है महाभारी, महाभारत युद्ध जिसके नाम पर लिखा गया हुआ महाभारत सबसे बड़ा पुराण, पूरा बड़ा हाल भर जाता है, इतनी बड़ी पुस्तक है। तो देखा जाए कि जो पहले पहले भगवत गीता आई उसका रचयिता कौन, हिस्ट्री के अनुसार 18वें अध्याय में आया है व्यास प्रसादात, किसके प्रसाद से प्राप्त हुई प्रसन्नता से, व्यास की प्रसन्नता से गीता ज्ञान मिला। इसी तरह वेदों की भी व्याख्या व्यास वाली आत्मा ने आरण्यकों और ब्राह्मणों के रूप में की, वही आत्मा पहले पहले ब्राह्मणों और आरण्यकों की व्याख्या उपनिषदों के रूप में करती है, वही आत्मा फिर पुराणों के रूप में महाभारत पुराण भी लिखती है, भागवत महापुराण लिखती है, वही आत्मा द्वापर में वाल्मीकि रामायण लिखती है, जो मुरली में बोला अपने अपने ग्रंथों में अपनी अपनी कथा कहानी लिख दी है। तो वाल्मीकि रामायण लिखने वाली कौन सी आत्मा हुई, राम वाली आत्मा साबित होती है, क्योंकि राम वाली आत्मा ने ही अपने जीवन की कहानी संगम युग की सारी रामायण में लिख दी। इसी तरह कलयुग में आकर वही आत्मा तुलसीदास के रूप में जन्म लेती है और तुलसीकृत रामायण लिखती है। तो किसने लिखी, कौन सी आत्मा ने, वही राम वाली आत्मा। इससे साबित हुआ कि सृष्टि पर सदाकाल ज्ञान की ज्योति जगाने वाली आत्मा कौन है, राम वाली आत्मा। जो मुरली ने बोला इस सृष्टि पर सदाकाल कोई चीज कायम है ही नहीं, सदाकाल कायम एक ही शिव बाबा है, तो वो शिव बाबा की यादगार क्या है, है? शिवलिंग सोमनाथ मंदिर में भी वो शिव बाबा की यादगार है, क्या
यादगार है,
शिव बाप की क्यों नहीं, इसलिए यादगार नहीं कही जा सकती कि शिव बाप कहते हैं ब्रह्मा के मुख से कि न मैं पूज्य बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ, तुम खुद ही पूज्य बनते हो, देवता बनते हो और तुम ही पुजारी बनते हो, तो तुम क्या बने,
द्वापर के आदि में पूज्य बने,
नहीं वो पूज्य बने कहाँ, पूज्य तो बने थे वास्तव में सतयुग के आदि में, तो सतयुग के आदि में जो पहला पूज्य बना वो कौन, जिसकी पूजा द्वापर युग में होती है, यादगार क्या, शिवलिंग, शिवलिंग में जो बिंदु रखा जाता है और जो लिंग रूप बड़ा दिखाया जाता है वो दोनों किसकी यादगार है, ब्रह्मा कुमारियां इस बात को मानेंगी, मानेंगी क्यों, क्यों नहीं मानेंगी,
मानने के लिए तैयार नहीं है,
हाँ शिव बाप ने तो बताया पहले पहले परिचय शिव बाबा का देना चाहिए, तो ब्रह्मा कुमारियों ने 32 गुणों वाला चित्र जो है वो पहले पहले प्रदर्शनी में मेले मलाखणों में रखना शुरू कर दिया। जिसको वो शिव बाबा कहती है वो निराकार को कहती है, निराकार को याद करने के लिए कहती है या साकार को याद करने के लिए कहती है? गुण और अवगुण साकार में होते हैं या निराकार में होते हैं? निराकार निर्गुण है या सगुण है? हम बच्चों के लिए बाबा कहते हैं क्या? मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोए। हम कितना भी पुरुषार्थ करें हम सुधर नहीं पाएंगे, क्या करें? कितने साल हो गए पुरुषार्थ करते करते? कितने साल हो गए? 80 साल हो गए। 80 सालों में कितने विकारी से निर्विकारी बने है? एक भी नहीं। एक भी नहीं माना 500-700 करोड़ में से सबके अंदर घुस के तुमने देख लिया।
बाबा ने कहा कोई भी पति इस पावन दुनिया में, कोई भी पावन दुनिया में ना, ये पति दुनिया में ठहर ना सके।
हाँ, इस दुनिया में एक भी आत्मा पावन बनेगी तो पावन आत्मा इस पतित भिखारी शरीर में, इस पतित दुनिया में ठहर ही नहीं सकेगी, कहाँ चली जाएगी? नई दुनिया में चली जाएगी। अच्छा ये बताओ, जब बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करो, कहते हैं कि नहीं? अपने घर को याद करो, कहते हैं कि नहीं? स्वर्ग को याद करो, कहते हैं कि नहीं? तो तीन तीन को याद करें या एक को याद करें? मुरली में तो बार बार बोलते हैं एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, तो एक को याद करें या तीन तीन को याद करें? तो एक को कैसे याद करें जब तीन तीन बता दिए? इसका मतलब है जो एक है इस सृष्टि पर, ऐसे नहीं है कि नहीं है, है। और अभी किस लिए है? कि जब तक इस सृष्टि का विनाश नहीं होता है, संपूर्ण विनाश नहीं होता है, तब तक वो सुप्रीम सोल कब तक इस सृष्टि पर रहेगा? जब तक विनाश की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है। नहीं बोला है मैं आता हूं तो धक से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं। क्या देर लगती है? नहीं, मैं आता हूं तो गायन है, राजा जनक को एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। क्या? एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। जनक माने क्या? जन माने जन्म, का माने करने वाला, माना इस सारी सृष्टि का जन्म देने का जो निमित्त बनता है वो ही हुआ जनक। उस जनक के लिए एक सेकंड गाया हुआ है। क्या? एक सेकंड में जीवन की। अरे यहां तो 80 साल हो गए, एक सेकंड कैसे? एक सेकंड ऐसे कि जो हम याद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इस याद की प्रैक्टिस में हम अपनी याद की यात्रा को सहज करते जाते हैं या मुश्किल करते जाते हैं? जितनी जितनी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है उतना उतना हर आत्मा नंबर वार आत्मिक स्टेज में जल्दी से जल्दी टिके। क्या बोला? अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी बनना है। अभी अभी का मतलब आकारी साकारी निराकारी बनने में एक सेकंड से ज्यादा न लगे, ऐसी प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसी प्रैक्टिस बनाने में कोई अव्वल नंबर जाएगा या नहीं जाएगा? जो अव्वल नंबर जाएगा बस उसी का नाम अर्जुन है। उस अर्जुन के लिए कहा भगवान ने गीता में, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। हे अर्जुन, ये तुम्हारा जो शरीर रूपी रथ है यही क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। ये धारणाओं का क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र माने कर्म भूमि भी है। सत्युग त्रेता में कर्म करते हैं? करते हैं नहीं करते? वहां आत्माभिमानी होते हैं, कर्म करने की दरकार ही नहीं, सारा कर्म प्रकृति करती है। आत्माभिमानी देवताओं के लिए कोई कर्म करने की दरकार नहीं है। जब हम देह अभिमानी बनते हैं तो कर्म शुरू होते हैं। जो आज भी कोई भी ऑफिस में चले जाओ, बड़े बड़े ऑफिसरों से कहो पूजा क्या है, कहते कर्म ही पूजा है। क्या कहते हैं? कर्म ही पूजा है। उनके यहाँ बोर्ड कहीं कहीं टंगे होते हैं, लिखा होता है कर्म ही पूजा है, उसके आगे एक शब्द और बढ़ा दो, गधे का कर्म ही पूजा है। गधा कर्म नहीं करता है? सारा दिन कुम्हार के यहाँ, धोबी के यहाँ सारा दिन कर्म करता है, और शाम को गाय बैल भैंस की जो बची हुई घास है वो आकर के खा के सो जाता है। तो बड़ा कर्मयोगी कौन हुआ? कौन हुआ? गधा हुआ ना। लेकिन किसके डंडे के नीचे रहता है? आधीन है या पराधीन है? आधीन है। तो कर्म करने वाले जो ये अहंकार दिखाते हैं कि हमने कर्म किया, वो कर्म करने वालों की इंद्रियां कर्म करती हैं। इंद्रियां जो देह का अंग है वो कर्म करती हैं, या आत्मा कर्म करती है कि कराती है? आत्मा कर्म कराती है और इंद्रियां करती हैं। तो दास दासी कौन हुई? इंद्रियां दास दासी हुई, आत्मा राजा है। राजा है इसलिए उत्तम अंग में बैठा हुआ है। ये अंग क्या कहा जाता है? उत्तम अंग। कैसा अंग? सारे अंगों में उत्तम अंग। उसका नाम है ब्रकुटी। कैसी कुटी? भरी पूरी कुटी। इस भरी पूरी कुटी में अगर आत्मा स्थित हो जाए सदा काल के लिए, तो उस आत्मा को कोई भी बंधन में बांध ही नहीं सकता। तो देखो, कर्म की दुनिया कौन से युग से शुरू होती है? द्वापर युग से। द्वापर युग से द्वैतवादी धर्म शुरू हुआ या नहीं हुआ? दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो से चार, चार से आठ बढ़ती ही चली गई। ये द्वैतवाद बढ़ने से दुनिया में संघर्ष बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? इसलिए देवताओं को कहा जाता है अद्वैत। क्या? अद्वैत। और दैत्यों से कहा, दैत्यों को कहा जाता है द्वैत, द्वैतवादी। तो ये दैत्यों की दुनिया है। कौन सी? द्वापर युग से, जहाँ कर्म करने पड़ते हैं कर्म इंद्रियों के द्वारा। कर्म इंद्रियां देह का अंग है, इसलिए देहवान है या नहीं है? देहवान है। जहाँ देहवान है, आत्माभिमान नहीं है, वहां स्वतंत्रता है, है? वहां स्वतंत्रता नहीं है। तो आज के जो कंट्रोल करने वाले देश विदेश में जो नेताएं हैं, सत्ताधारी हैं, वो भी क्या समझते हैं? क्या हम कर रहे हैं अच्छा काम? हम इस दुनिया को सुख की दुनिया बना रहे हैं, स्वर्ग बना रहे हैं, क्या बनाए रही है? गांधी जी ने रामराज लाया है? अरे कोई राजा का राज्य आता है तो राजा खुद लड़ाई लड़के राज्य लेता है या कोई उसको लड़ाई लड़के तो कोई दूसरा दे देता है? है? खुद लड़ाई लड़ता है। तो राम राज्य आना होगा तो राम खुद ही सामने आएगा, प्रत्यक्ष होगा, या गांधी जी लाएंगे राम राज्य? फिर राम राज्य आ गया है और ही रावण राज्य हो गया। तो अब करना क्या है, समझना क्या है, यही समझना है कि इस मनुष्य शक्ति का जो बाप है, बाप से क्या मिलता है? वर्षा मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है। निराकारी बाप से निराकार वर्षा मिलता है, क्या? ज्ञान का वर्षा मिलता है। और साकारी बाप से साकारी राजाई का वर्षा मिलता है, क्या? निराकार साकार राजाई देता है या साकार बाप साकारी राजाई देता है? साकार बाप साकारी राजाई देगा। धनवान बाप होगा तो धन का वर्षा देगा, क्या? जमींदार बाप होगा तो जमीन का वर्षा देगा। जो जमींदार बाप, जो धनवान बाप खुद ही प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, खुद ही इस प्रॉपर्टी का भोग भोगने वाला नहीं है, वो अपने बच्चों को दे सकता है? नहीं दे सकता। वो निराकार ज्ञान का सागर है। क्यों? क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, इसलिए त्रिकालदर्शी है। लेकिन वो कहता है मैं त्रिकालदर्शी तो हूँ, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी तुम बच्चे हो। मास्टर का मतलब प्रैक्टिकल में करने वाले तुम बच्चे हो। क्या मतलब हुआ? मैं सिर्फ ज्ञान देता हूँ, थ्योरी देता हूँ या प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ? प्रैक्टिकल करके दिखाता है, थ्योरी का ज्ञान देता है, वो प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाता। वो ज्ञान देता है योग का, योग कैसे लगाना है, ज्ञान देता है ना। खुद योगी बनता है, हैं? अरे उसे योगी बनने की क्या दरकार है? वो तो योगी बनने की दरकार है, वो तो है ही सदैव आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाला। तो जिसको ज्ञान देता है और जो उस ज्ञान को संपूर्ण जीवन में अपने धारण करता है, पहले पहले वो शिव बाप का बड़ा बच्चा, बड़ी आत्मा, वो बड़े से बड़ा राजयोगी कहा जाता है। उस राजयोगी के तीन नाम प्रसिद्ध हैं, क्या? एक कृष्ण, क्या कहते हैं कृष्ण को? हैं? योगी राज। और ब्रह्मा का बड़ा पुत्र सनत कुमार, उसको कहते हैं ज्ञानेश्वर है, योगीश्वर। और शंकर, उनको क्या कहते हैं? योगीश्वर। तो योगियों का ईश्वर है, ज्ञानियों का ईश्वर है, ईश्वर एक होगा या अनेक होंगे? ईश माने शासन करना। योगियों को शासित करने वाला, ज्ञानियों को शासित करने वाला एक होगा या अनेक होंगे? एक होगा। तो ये जिनका नाम शास्त्रों में सनत कुमार दिया, जिनका नाम शास्त्रों में कृष्ण दिया, वो संगम भी कृष्ण है। जिनका नाम शास्त्रों में क्या दिया? शंकर है, वो जगत पिता है, मनुष्य शक्ति का पिता है, तो वो एक ही है योगीश्वर, संपूर्ण योग लगाने वाला। जो एक योगीश्वर है वही जब संपन्न बनता है, कितने साल में? 40 साल में। तो बच्चों को नंबरवार राजयोग सिखाता है, राजयोगी बनाता है, आप समान बनाता है या नहीं बनाता है? जब बाप ने आकर के आप समान बनाया तो बच्चे का क्या है, क्या तरीका रहेगा? उसका भी काम है, जो भी मनुष्य शक्ति के बाप के बच्चे हैं उनको आप समान योगी बनाना। उस आप समान का यादगार है, क्या यादगार है? आज भारत में गांव-गांव में शहर-शहर में पूजा जाता है, विदेशों में खुदाइयां हुई हैं, सबसे जास्ती लिंग मूर्तियां मिली हैं, ये यादगार है, सारी पृथ्वी पर सार्वभौम यादगार है। तो मनुष्य शक्ति का बाप है जो ऐसी योग की स्थिति में बैठा है। कैसी योग की स्थिति में है? हाँ, जो इंद्रियों में, और इंद्रियों में भी जो बड़ी कठिनाई से कंट्रोल होने वाली इंद्रिय है, उस इंद्रिय से कर्म भी करता है। ऐसे नहीं कर्मधारा को छोड़ देता है। कर्मयोगी है या सिर्फ योगी है? कर्मयोगी है, कर्म भी करता है और कर्म करते बुद्धि योग से एक बाप को, ज्योति बिंदु को इतना गहराई से याद करता है, मैं तुझ में समा जाऊं तू मुझ में समा जाए। कैसा याद करता है? लीन हो जाता है। याद में लीन होने की बात है या चुल्लू भर पानी समुद्र में फेंक दिया जाए इसे लीन होने की बात है? है बाप समान स्टेज धारण करने की बात है। तो ऐसी आत्मिक स्टेज कांस्टेंट धारण करना, वो ही आत्मा की संपूर्णता। उस आत्मा को मंदिर में हीरा के रूप में द्वापर की याद में सोमनाथ मंदिर में पूजा गया। सोमनाथ क्यों कहा गया? जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है उसको कंट्रोल कर लिया। उस ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को बैल भी कहा गया। क्या शंकर की सवारी काहे पे दिखाते हैं? बैल पर। अभी बैल शंकर पर सवार है या शंकर बैल पर सवार है? अभी कौन किसको कंट्रोल कर रहा है? है? बैल कंट्रोल कर रहा है, सांप कंट्रोल कर रहा है। क्या जंगल में दो प्राणी होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं? जंगल का राजा कौन है? शेर। शेर ज्यादा बुद्धिमान होता है या शेर की एक औलाद भी होती है जिसे कहते हैं टाइगर, बाघ? ज्यादा बुद्धिमान कौन होता है? टाइगर ज्यादा बुद्धिमान होता है। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? टाइगर। शेर क्यों नहीं है? शेर क्यों नहीं? क्योंकि शेर बच्चों जैसी बुद्धि है, अकल नहीं चलाता, सीधा हमला करता है, ये नहीं देखता कि मैं इस हमले में हार जाऊंगा या जीत जाऊंगा। और टाइगर क्या करता है? चालाक होता है, देखा माहौल मेरे अनुकूल है तो हमला करेगा, अनुकूल माहौल नहीं है तो हमला नहीं करेगा, अपनी दबी हुई उंगली निकाल लेगा आराम। तो भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर माना जाता है, इसीलिए जो बुद्धिमान प्राणी है, क्या बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? है शिव बाप। और बुद्धिमानों की बुद्धि के बच्चे कौन है? दुनिया में बुद्धिमान किसको माना जाएगा? जो वैज्ञानिकों को पहचान ले वो, धर्म पिताओं को पहचान ले वो, देवात्मा को पहचान ले वो, राक्षस को पहचान ले वो, या सुप्रीम बाप को पहचान ले वो, ज्यादा बुद्धिमान कौन हुआ? तो बाप क्या देखते हैं बच्चों में? है बच्चों में कोई गुण नहीं है, बाप जानते हैं ना बच्चों में कोई गुण नहीं, लेकिन एक गुण देखते हैं, क्या? जो दुनिया में कहीं बाप को नहीं मिलता। क्या गुण? बाप की पहचान बाप के बच्चे करते हैं दुनिया में। और धर्म पिताओं के जो फॉलोअर्स बच्चे हैं वो अपने बाप को पहचानते हैं, सुप्रीम सोल बाप को नहीं पहचान पाते। यहाँ भी ऐसे ही है, ब्राह्मणों की दुनिया में नौ कुरियों के ब्राह्मण हैं जो दूसरे दूसरे धर्मों से कन्वर्ट होकर के आए हैं, वो पहचान करके भी नहीं पहचान पाते, ठोकर मार के भाग जाते हैं, ग्लानी करने लग पड़ते हैं। क्यों? वो ही द्वापर युग से हिस्ट्री को देखो, जो बाप बोलते हैं एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से ज्ञान नहीं सुनना चाहिए। अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान व्यभिचारी हुआ तो व्यभिचारी धर्मों में कन्वर्ट होना पड़ेगा। और भारतवासियों की ये खास कमजोरी बताई, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति को पाया, और सुनी सुनाई बातों पर प्रभावित होना माताएं ज्यादा करती हैं या भाई लोग ज्यादा करते हैं? आज भी सारी दुनिया में ऐसे ही चल रहा है। एक भारत देश ही मात्र प्रधान देश है, दुनिया के कोई भी देश मात्र प्रधान नहीं है। क्या? क्यों? क्योंकि जो बापों का बाप सुप्रीम गॉडफादर है वो जब आता है इस धरती पर तो पहले पहले माता का आधार लेता है, या आत्मा का आधार लेता है? माता कौन है? आत्मा का आधार लेता है, दादा लेखराज ब्रह्मा का आधार लेता है।
आदि ब्रह्मा जो परम ब्रह्म
है, हाँ, वो जिसमें आता है वो प्रकृति का पुतला मात्र रह जाता है। क्या? पांच तत्वों का पुतला रह गया। क्या रह गया? शव रह गया। क्या रह गया? देह अभिमानी देह अहंकारी रह गया, आत्मा का नाम निशान नहीं रहता। क्या रह जाता? दुनिया के धर्मों में, धर्म कहो अधर्म कहो, उनमें कौन सा ग्रुप ऐसा है, संगठन ऐसा है, दुनिया का देश ऐसा है जो महादेह अहंकारी है? है रशियंस मनुष्य है? रशियंस भी मनुष्य है या नहीं? मनुष्य है। उन मनुष्यों का भी कोई बाप होगा या नहीं? है कौन? वही अरे शंकर तो बाद में कहा जाता है, शंकर तो बाद में कहा जाता है, जब सदाशिव उसमें प्रवेश करता है, चंद्रमा उसमें प्रवेश करता है, तब तीन आत्माओं का संकरण शंकर कहा जाता है। लेकिन उससे पहले क्या है, है? उससे पहले वो पांच तत्वों का जड़ पुतला है, देह अहंकार का अव्वल नंबर रूप है। इसलिए बोला उसमें शिव नहीं है तो क्या है, शिव है तो तुम किसको याद करते हो? जब अमृत वेले याद में बैठते हो तो किसको याद करते हो, और कौन भूल जाता है और कौन याद रह जाता है? सच्ची सच्ची बात बताओ, है? निराकार भूल जाता है, और जो सब है वो याद रह जाता है। उस शब के द्वारा शिव ने प्रवेश करके बुलवाया, क्या बुलवाया? मन, मना भव, मेरे मन में समा जा। तो जब उसको ज्ञान मिला तो उसके मन में क्या समाया हुआ है, लक्ष्य क्या है जिंदगी का, क्या लक्ष्य है, है? हाँ, उसके मन में लक्ष्य है नर से नारायण बनने का लक्ष्य है, और प्रैक्टिकल में वो लक्ष्य पूरा होता है। नारायण का अर्थ क्या है? ज्ञान जल में सदैव बना रहे। तो ईश्वरीय ज्ञान मिलने के बाद कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो और आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु है, ये ज्ञान धारण करने के बाद उसका पहला स्टेप क्या है? अरे जब साप्ताहिक कोर्स दिया जाता है तो पहला ज्ञान क्या दिया जाता है? आत्मा का। ये पहला स्टेप, पहला फाउंडेशन है कि मैं देह नहीं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। जिस आत्मा की प्रैक्टिस में फाउंडेशन काल में ही, माने जब ज्ञान मिला उस काल में ही, वो आत्मा सबसे तीखी जाती है। क्या? इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला है, ये बाप दादा का जो स्मृति दिवस मनाते हो वो 18 जनवरी असली नहीं है। क्या असली बाप दादा कौन है? आत्माओं का बाप कौन है? शिव। और शिव का बड़ा बच्चा कौन है? जो बड़ा बच्चा है वो जब आत्मिक ज्ञान मिलता है तो आत्मिक स्थिति की ऐसी तीखी प्रैक्टिस करता है फाउंडेशन काल में ही कि कोर्स का टाइम पूरा होने से पहले ही 5 दिसंबर बताया, वो वाणी सुनी होगी बहुतों ने, वो 5 दिसंबर को आत्मिक स्थिति में संपूर्ण रूप से स्थिर होने लगता है। और मेल कब होता है? चीटी का मेल हाथी से शादी कर दी जाए, मेल होगा? सांप लंबा है और उसकी शादी जो मोटी व्हेल मछली होती है उससे कर दी जाए तो मेल होगा? समान से मेल होता है या असमान से मेल होता है? तो शिव बाप का मेल पहले पहले इस सृष्टि में कब और किससे होता है? 5 दिसंबर बताया, माना वो राम वाली आत्मा ही 5 दिसंबर को इस सचिव रूपी रंगमंच पर पहले पहले आत्मिक स्थिति में स्थित होती है और शिव बाप ज्योति बिंदु से मिलन मेला मनाती है पहली बार। इसलिए वो स्मृति दिवस पक्का है, वो है बाप और वो है दादा। दादा माने आत्माओं में आत्मा आत्मा, भाई भाइयों में सबसे बड़ा भाई। अभी तक बाप दादा किसे समझते थे हैं? जो समझते थे वो देह अभिमान के आधार पर समझते थे कि अपन को आत्मा अभिमानी समझते थे। देह अभिमान में थे तो देहधारियों को बाप दादा समझ लिया, लेकिन हम वास्तव में देह अभिमानी देह हैं या ज्योति बिंदु आत्मा हैं? जब ज्योति बिंदु आत्मा हैं तो 500-700 करोड़ ज्योति बिंदु 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 आत्माओं के बीच में बड़ा भाई कौन, जो पहले आत्मिक रूप में टिक जाए वो ही बड़ा भाई। पहले बड़े बच्चे का जन्म होता है या बीच वाले बच्चों का जन्म होता है या लास्ट वाले बच्चों का जन्म? बड़े बच्चे का जन्म होता है। आज जन्म माने क्या? कि ये जान लिया कि मैं आत्मा हूँ तो जन्म हो गया। नहीं, सारे जन्मों की बात छोड़ो, प्रैक्टिकल में ये प्रैक्टिस हो जाए कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, ये प्रैक्टिकल में आत्मिक स्थिति बनने लगे। नहीं तो बहुत ऐसे कहते हुए देखा, आत्मा को कैसे याद करूं, आत्मा की याद ही नहीं आती, हमको तो देह ही याद आती है। तो फिर आत्मा बने नहीं बने? तो आत्मिक स्थिति में जो आत्मा पहले पहले स्थित हो जाती है वो ही शिव बाप का बड़ा बच्चा हुआ। और ये भी पक्का है, जो जितनी आत्मिक सूक्ष्म स्टेज में टिकेगा, ज्यादा से ज्यादा लंबी स्टेज तक ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा?
सारे जन्मों
को नहीं, वो तो बाद की बात। आत्मिक स्टेज में टिकेगा तो मन बुद्धि रूपी आत्मा सूक्ष्म बनेगी या स्थूल बनेगी, और सूक्ष्म आत्मा जो है वो ज्ञान की गहराई में ज्यादा जाएगी या ऊपर ऊपर जाएगी? ज्यादा जाएगी। उसका मनन चिंतन मंथन जास्ती चलेगा। ये मनन चिंतन मंथन जब जास्ती चलता है तो ये ब्राह्मणों की निशानी है, मनुष्य की निशानी है। मनुष्य कब कहा जाता है? मननात् मनुष्य। मनन चिंतन मंथन करे, मन का उपयोग करे तो मनुष्य, और मन का उपयोग न करे तो मनुष्य ही नहीं, जानवर। बाबा कहते जानवर से भी बदतर बन गए। आज की षष्ठी में ज्यादातर मनुष्य आत्माएं देश विदेश की 5 तत्वों से, 5 एलिमेंट से बनी देह के तत्वों का चिंतन कर रही है, या देह के अंदर आत्मा क्या है उस आत्मा का चिंतन कर रही है, देह का चिंतन कर रही है। इसलिए सब पंचभूतों का चिंतन कर रहे हैं। जो पंचभूतों का चिंतन में लगे हुए हैं उन्हें भौतिकवादी कहें या अध्यात्मवादी कहें, कोई भी हो, कोई भी धंधे वाले को पकड़ लो, सब देह के धंधे में लगे हुए। जो असली हम हैं उसका पोषण करने में जब इस सृष्टि पर कोई नहीं लगता, सारे ही भौतिकवादी बन जाते हैं, भारतवासी भी भौतिकवादी बन जाते हैं, तब भगवान बाप को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। और उन भौतिकवादियों में बड़े से बड़ा भौतिकवादी कौन बनता है? जो आत्मा बिल्कुल भूल जाता है। शूटिंग पीरियड में भी भूलता होगा कि नहीं? अरे ब्रॉड ड्रामा में भूल जाता है, देह अहंकारियों का भी बाप बन जाता है, बड़े से बड़ा देह अहंकारी बन जाता है, तो उसको टाइटल मिल जाता है हर हर बम बम, एटमिक एनर्जी बनाने वाले हिम्मत नहीं कर पाते हैं, उनको भी सहयोग देता है, एटमिक विस्फोट करा देता है, उनका भी मुखिया बन जाता है। यादवों का हेड कृष्ण कहा जाता है, यादवों का हेड शंकर कहा जाता है। तो वो आत्मा पक्का पक्का 100% देह बनता है या नहीं बनता है? देह बनता है। इसलिए बोला कि मैं पतित तामसी रथ में आता हूँ, रथ का आधार लेता हूँ, जिस रथ को गीता ने कहा इदम शरीरम कौन्तेय, अर्जुन की तरफ इशारा करके बोला इदम माने ये है, ये कुंती पुत्र है, ये शरीर क्षेत्र है, काय का क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र, क्या धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ये धर्म माने धारणाओं का क्षेत्र भी है, जो देवताओं में धारणाएं होती हैं सब प्रकार की, वो भी यही क्षेत्र है अब्बल नंबर, और कर्म क्षेत्र में भी यही अब्बल नंबर है जो कर्म क्षेत्र में भी आगे। ये यज्ञ कुंड है क्या? इस यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। यज्ञ कब से शुरू हुआ है? 36 से शुरू हुआ, माने 36 से जो यज्ञ शुरू हुआ है उसका नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव ज्ञान यज्ञ नाम क्यों नहीं पड़ा? ब्रह्मा नाम ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं पड़ा? विष्णु नाम यज्ञ क्यों नहीं पड़ा? राम ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं पड़ा? कृष्ण ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं नाम पड़ा? क्योंकि जो रौद्र रूप धारण करता है, कैसा रौद्र रूप? सारी दुनिया के जितने भी प्राणी हैं, पंचभूतों का शरीर धारण करने वाले प्राण रूप आत्मा, उन सब का इस सृष्टि से पलायन करा देता है, भागो यहां से। दया आती है, दया दया धर्म का मूल है। धर्म का मूल क्या है? दया। तो जो दया है वो जड़ तुम्हें ही बुद्धि में आएगी या चैतन्य आत्मा में आएगी है? तो उसमें दया क्यों नहीं आती किसी के ऊपर? सौ परसेंट देह अहंकारी बन जाता है, आत्मा का नाम निशान नहीं रहता, माने वो पूरा लिंग बन गया पत्थर का। क्या द्वापर के आदमी फिर भी हीरा जला हुआ दिखाया गया, थोड़ी आत्मिक स्थिति थी कलयुग के अंत में। शिवलिंग में हीरा जड़ा हुआ दिखाते हैं कहीं? क्या दिखाते हैं? हैं? पत्थर ही पत्थर, एकदम काला पत्थर या संगमरमर का सफेद पत्थर भी दिखाते हैं? हैं? काला पत्थर, कहीं कहीं सफेद पत्थर दिखाया होगा, वो भी अभी की यादगार। थोड़ी बहुत आत्मिक स्थिति में स्थित होता है तो सफेद पत्थर, बाकी ज्यादातर देहाभिमान में रहता है। तो जब संपूर्ण सृष्टि का विनाश होगा तो टोटल देहाभिमान में होगा या नहीं होगा? और विनाश कौन सी पावर से होता है? अपवित्रता से विनाश होता है, व्यभिचार से विनाश होता है। व्यभिचार किसे कहा जाता है? अपवित्रता किसे कही जाती है? पतितपना किसे कहा जाता है? विषपाई किसे कहा जाता है? विष किसे कहा जाता है? पराई स्त्री और पर पुरुष के भोग को क्या कहते हैं? विष कहते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी हर ब्राह्मण अनुभव करता होगा, चाहे आंखों से चाहे कोई भी इंद्रिय से, जब ये व्यभिचार का विष पीते हैं तो ज्ञान बुद्धि में से उड़ जाते हैं, ज्ञान ठहरता ही नहीं, मिट्टी का पात्र हो जाता है, देह अभिमान का पात्र। इसलिए बोला शेरनी का दूध है सोने के पात्र में ठहरता है। तो शंकर जी तो बात अलग है, क्या अलग बात है? शंकर में ज्ञान क्यों ठहरता है? हाँ, क्योंकि उसमें मुकर्रर रूप से शिव प्रवेश है, इसलिए ज्ञान ठहरता है। नहीं तो शिव अगर नहीं है तो क्या हो जाता? शब हो जाता। कान खोल के सुने, क्या सुने है? अगर शिव ज्योति बिंदु याद नहीं रहा, सिर्फ शंकर का चेहरा याद रहा या देह याद रही, तो मुर्दे को याद किया या शिव को याद किया? करना क्या है? जो पंच तत्वों का, पंच महाभूत का पुतला है, तामसी पुतला भले है, दुनिया का सबसे जास्ती तामसी पुतला, पतितम कामी कांटा भले है, लेकिन प्रकृति का पुतला है या नहीं? उस प्रकृति के पुतले को शिव की आत्मा प्रेफरेंस देती है। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को प्रेफरेंस नहीं देती। ये पक्षपात क्यों करते हैं? अरे भगवान है तो पक्षपात करना चाहिए बीज का सुधार करना चाहिए। अरे 108 बीज नहीं है नंबर वन है तो कैसे पता चले?
बात है अभिमान है, संसार में अभिमान है
ही नहीं। अगर शंकर में देह अभिमान नहीं है तो वो याद में क्यों बैठा हुआ? चार सब्जेक्ट हैं ईश्वरीय ज्ञान के, ज्ञान योग धारणा सेवा है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है, जिसमें अगर फेल हो गए बाकी सब्जेक्टों में पास हो जाए तो भी फेल माने जाएंगे, और एक सब्जेक्ट में पास बाकी सब्जेक्ट में फेल तो भी पास माने जाए। वो कौन सा सब्जेक्ट? तो याद के सब्जेक्ट में कान खोल करके सुन लेना चाहिए, कि याद के समय हम मुर्दे को तो नहीं याद करते हैं, मुर्दे को लंबे समय याद करते हैं, या मुर्दे में बैठा हुआ शिव याद आता है, प्रवृत्ति को याद करते हैं या निवृत्ति को याद करते हैं? याद करते हैं, अमृत वेले लगातार याद करते हैं।
भगवान का छोटा रूप याद नहीं आता, बड़े रूप को याद।
अच्छा, माने लिंग रूप को भी याद करेंगे तो भी हमारा कल्याण हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो निश्चित है कि वो लिंग रूप जो है वो ऊर्ध्व गति में जाएगा या नहीं जाएगा, ऊर्ध्व रेता बनता है या नहीं बनता है, अमोघ वीर्य बनता है या नहीं बनता है,
बनता है।
जब इतना पक्का है कि वो बनता जरूर है तो फिर बड़े रूप को याद करने में क्या घाटा? कोई घाटा नहीं है।
तो निराकार
याद करें, लेकिन याद रहता है, लगातार याद रहता है, हैं? बुद्धि से निकल जाता है। क्यों? कोई कारण होगा। हाँ, 21 जन्म तो वो बुद्धि में समाया ही हुआ रहता है कि सतयुग में उसी आदि नारायण का राज्य में बैठे हैं, सबकी प्रजा की बुद्धि में, चाहे सातवा नारायण हो, चाहे आठवा नारायण हो, चाहे कोई नंबर का नारायण की प्रजा हो, सबकी बुद्धि में है ये नारायण का राज्य कहाँ से चला? वहां से चला। त्रेता में भी राम से चला, वो बुद्धि में रहता है। एक ही बुद्धि में रहता है या अनेक रहते हैं? एक ही में रहता है। द्वापर युग से द्वैतवादी धर्म पिताएं आ जाते हैं और ढेर की ढेर मनुष्य आत्माएं भारतवासी मातृ प्रधान होने के कारण, माता जैसी बुद्धि होने के कारण, माता माने, माता माने क्या, पिता माने क्या, पिता माने बीज, माता माने धरणी, माता माने धरणी, धरणी होती है साकार और बीज होता है निराकार, बाप, बाप को बीज कहा जाता है। तो सारी दुनिया अंत समय में किसको याद करेगी? क्योंकि साकार को याद करना सहज है, क्योंकि जन्म जन्मांतर वो हीरो पार्टधारी भले पहचान में नहीं आता है क्या, लेकिन 500-700 करोड़ के साथ ही पार्ट बजाता है या नहीं बजाता है, उसकी स्मृति का सिक्का सबकी बुद्धि में बैठता है या नहीं बैठता है? बैठता है, इसलिए वो साकार भूलता नहीं। 500-700 करोड़ को वो साकार याद रहता है महाविनाश के समय में। तो अंतमते सो गते, सबकी मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु 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 आत्माएं कहाँ जाएंगी, किसके पास पहुंचेंगी? हैं? उसी साकार के पास। इसलिए झाड़ के चित्र में ऊपर कौन बैठा हुआ है? हैं? बैठा हुआ है, क्या हो रहा है? सभी आत्माएं उसी ओर खींची चली जा रही है। कहाँ? जो हम आत्माओं का घर भी है, परमधाम भी है। क्या? अरे परिवार में जितने भी भांति होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, वो कहाँ से निकले? हैं? कोई कहेंगे माँ से निकले, अरे माँ के अंदर भी कहाँ से आए, बाप से आए, तो जहाँ से जो आता है वही वापस जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्मामृतस्य च, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु जरूर होती है। तो यही देखा गया कि जितने भी मनुष्य आत्मा इस धरती पर शरीर छोड़ती है, जिसकी याद में शरीर छोड़ती है उसी में समा जाती है मन मना भव। उनको महामंत्र कौन सा मिला है? मेरे मन में समा जा। और तेरे मन में क्या समाया हुआ है? उसके मन में क्या समाया हुआ है जो झाड़ के ऊपर बैठा है? वो ही ज्योतिबिंद। तो वो सभी आत्माओं को आकर्षित करता है, खींचता है, इसलिए उसका नाम भक्ति मार्ग में कृष्ण रख दिया। क्या रख दिया? कृष्ण माने आकर्षण करने वाला। लेकिन उन्होंने सतयुग के कृष्ण का नाम रख दिया, क्योंकि सतयुग त्रेता की हिस्ट्री फिर भी शास्त्रों में मिलती है, लेकिन संगम युग की हिस्ट्री किसी शास्त्र में नहीं मिलती। वो हिस्ट्री जो संगम युग में पार्ट बजाया है, संगम युग कृष्ण के रूप में इसकी गोद में बैठ करके पार्ट बजाया है, कृष्ण वाली आत्मा ने किसकी गोद में बैठकर पार्ट बजाया है? शंकर की गोद में बैठ करके बच्चे का पार्ट बजाया। वो बच्चा कृष्ण प्रैक्टिकल में आत्मिक रूप में प्रवेश रहता है या नहीं रहता है? है? संपन्न होने के बाद भी है? संपन्न होने के बाद भी प्रवेश रहता है? नहीं तो कहाँ जाता है? जगदम्बा में जाता है। जगदम्बा में अधूरे रूप में जाता है या संपूर्ण रूप में जाता है? माना जब बाप का जन्म होता है तो बच्चे का जन्म नहीं होता। अरे बच्चा जब संपूर्ण बनता है, हाथ पांव नाक आंख कान नौ इंद्रियों से, और संपूर्ण हो करके थोड़ा बड़ा हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है गर्भ, तब ही जन्म लेता है प्रत्यक्षता रूपी या पहले ही जन्म लेता है? इसका मतलब 17-18 में वो आत्मा संपन्न नहीं बनती। बाप का प्रत्यक्षता जन्म है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म है, तो बच्चे का नहीं है। तो जब बच्चे का जन्म है तो वो आत्मा संपूर्ण माने संपूर्ण चंद्रमा हो गई। क्या हो गई? संपूर्ण चंद्रमा हो गई। तो संपूर्ण चंद्रमा कहाँ जाता है? हाँ, वो ही राम बाप, उसी में प्रवेश होकर के पार्ट बजाता है। वो राम बाप वाली आत्मा, उसका पार्ट पूरा हुआ। वो देह भान में आके पार्ट बजाएगी या आत्मा भान में पार्ट बजाएगी? है? कैसा पार्ट बजाएगी? आत्मिक स्थिति में सदा पार्ट बजाएगी, माने शूटिंग पूरी हो गई उस आत्मा की। है? सभी के लिए शूटिंग पूरी हो गई? अरे शूटिंग तब तक चलती रहती है ड्रामा की जब तक संपूर्ण पक्की शूटिंग न हो जाए।
शूटिंग में थोड़ी भी रील में कमी रहेगी तो दोबारा शूट होती है। तो 17-18 में संपूर्ण शूटिंग 500 करोड़ की हो जाएगी। फिर शूटिंग चालू रहेगी या नहीं रहेगी? शूटिंग चालू रहेगी, और जब तक शूटिंग चालू रहेगी तब तक रामकृष्ण की आत्माएं सच रूपी रंगमंच पर संपन्न स्टेज में पार्ट बजाएंगी या नहीं बजाएंगी? पार्ट भी बजाएंगी। तो कृष्ण वाली आत्मा संगम जी कृष्ण के रूप में पार्ट बजाती है। बाकी जो ज्ञानी आत्माएं हैं वो ये कहेंगे जिनका शरीर ही नहीं है उनका नाम थोड़े ही दिया जाता है। नाम शरीरधारी का दिया जाता है या आत्मा का नाम दिया जाता है, है? या सूक्ष्म शरीर का नाम दिया जाता है? शरीरधारी का नाम दिया जाता है। तो जो ज्ञानी है उनकी बुद्धि में बैठता है कि संगम जी कृष्ण का पार्ट राम वाले शरीर है उसका है, और जो ज्ञानी नहीं है माने रुद्रमाला के मण का नहीं है या उस कुल के नहीं है यथा राजा तथा प्रजा नहीं है, बाकी 4.5 लाख से बगैर जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं वो कृष्ण को ही भगवान मानेंगे। दादा लेखराज वाली आत्मा को ही भगवान के रूप में मानेंगे, भले शरीर है या नहीं है। है शरीर तो 69 में ही खत्म हो गया। तो तीसरी बार विनाश कब होता है ब्राह्मणों की सृष्टि में? 2017-18। घबराहट हो रही है क्या? है घबराहट तो नहीं हो रही है। 70 में भी कोई देह से थोड़ी खत्म हो गई थे। 70 में विनाश की घोषणा बाबा ने की मुरलियों में, चित्रों में, है ज्ञानावत्र पत्रिका में। तो क्या ये शरीर खत्म हो गया था? है तो चिंता कब होती है? जब शरीर खत्म हो जाए। तो हम देह अभिमानी है या आत्मा अभिमानी है? देह की ज्यादा चिंता है, आत्मा के पद का विनाश हो जाए कोई चिंता नहीं है? होना क्या चाहिए? आत्मा की चिंता होनी चाहिए। उसको कहेंगे पुरुष अर्थ। पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं कर्म, बोल रहे हैं मुख से, देख रहे हैं आंखों से, संकल्प कर रहे हैं मन से, जो कुछ भी कर रहे हैं किसके लिए करना चाहिए? आत्मा के लिए करना चाहिए। लेकिन हम किसके लिए कर रहे हैं? है देख, इसलिए निश्चिंत है। हमारी देह तो खत्म होने वाली है नहीं अभी। जैसे 76 में ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विनाश हुआ था, लेकिन हमारी देह तो बरकरार रही, हमें कोई चिंता नहीं हुई। ऐसे अभी भी चिंता भले नहीं हुई, लेकिन एडवांस में आने से पहले अपनी मानसिक स्थिति को देखें। मानसिक स्थिति डावाडोल थी या कोई ठिकाना मिला था बुद्धि को? है डावाडोल थी। और जब मानसिक स्थिति डावाडोल थी माने आत्मा डोल रही थी, आत्मा डोलायमान थी या अचल थी? डोलायमान थी। अब जब आत्मा डोलायमान होती है, मन चंचल होता है, मन कंट्रोल से बाहर हुआ, कोई ठिकाना नहीं था, तो इससे साबित होता है कि हम संगम युग में मौज में थे या परेशानी महसूस कर रहे थे। फिर जब एडवांस में आए
तो मौज में अनुभव करने लगे या परेशानी का अनुभव किया? मौज में अनुभव करने लगे। और बाबा भी यही कहते हैं, सारा संगम युग है मौजों का युग। क्या? पूरा संगम युग मौजों का युग है। जितनी मनसा से मौज मनाएंगे उतना जन्म जन्मांतर सुखी रहेंगे, और जितना मनसा में परेशानी महसूस करेंगे, समस्याएं महसूस करेंगे, दुख का अनुभव करेंगे, रोने का अनुभव करेंगे, उतने ही वहां दुनिया में दुखी रहेंगे। तो कैसी शूटिंग करनी चाहिए? मौजों की शूटिंग करनी चाहिए। लेकिन इसके लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। ज्ञान की पराकाष्ठा होगी? ज्ञान की पराकाष्ठा क्या? बाप के ऊपर अंश मात्र भी अनिश्चय आता है, परसेंटेज में भी अनिश्चय बुद्धि बने। माने मौज में नहीं है ये नहीं कहा जाता कि 99% हमारा बाप है, हो सकता है 1% न हो। कहेंगे है तो 100% है, नहीं है तो नहीं। तो ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। ऐसी पराकाष्ठा में कभी भी क्या बेचैनी का अनुभव नहीं करेंगे, सदा चैन में रहेंगे, अमन चैन में रहेंगे। अमन बाप के बच्चे हैं तो क्या होना चाहिए? अमन होना चाहिए, अमन चैन में होना चाहिए। लेकिन अमन चैन में नहीं है, कारण ज्ञान बुद्धि में नहीं है। ज्ञान का वर्षा तो एक को ही देखे गया है, उसकी बुद्धि में होगा। एक बाप कौन सा? अरे वेद के दो बाप हैं, कौन से बाप को पहचाना? अरे निराकार की पहचान भी कोई पहचान है? साकार के द्वारा पहचान है। तो साकार के द्वारा जो पहचान है, उस पहचान को कोई कानों में बात डालता है और हिल तो नहीं जाते हैं। सुन रहे नहीं? पक्का बच्चा है, सदगुरु निंदा सुनिए न कहना। लेकिन एक बात और है, बाप कहते हैं बच्चे का कनेक्शन बाप से 2 महीने तक भी नहीं रहा तो बाप क्या समझते हैं? बस समझ लो, जब से ज्ञान में आए हैं तब से लेकर के हम अखंड बच्चे बन के रहे हैं। अखंड पढ़ाई पढ़ी है, क्योंकि बाप पढ़ाई पर बहुत जोर देते हैं। कोई अखंड होकर के पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, रोज नहीं पढ़ते हैं, 7 दिन में एक बार आते हैं। तो कौन से धर्म में चले जाते हैं? कौन से धर्म की शूटिंग कर रहे हैं? मुसलमान जुमा जुमा जामा मस्जिद में जाएंगे, जाते हैं ना? और क्रिश्चियन संडे संडे गिरजाघर में जाएंगे, रोज नहीं जाएंगे। तो देखना है हमारी कौन सी शूटिंग हो रही है। क्या रिहर्सल कर रहे हैं? पेट के धंधे को, जो पांच तत्वों का बना हुआ पेट है उसके धंधे को ज्यादा महत्व देते हैं या बुद्ध रूपी पेट को ज्यादा महत्व देते हैं? ज्यादा पोषण किसमें, टाइम ज्यादा किसमें लगाते हैं? दोनों में लगाते हैं, आधा आधा लगाते हैं। 12 घंटा मन बुद्धि रूपी आत्मा के पोषण में लगाते हैं, हैं? 12 घंटा हैं? सरेंडर हैंड्स के लिए तो बोला है कि 16 घंटे ईश्वरीय सेवा में लगे रहेंगे तो जो गृहस्थी लोग हैं वो अगर 8 घंटे सेवा करते हैं तो उनके बराबर पहुंचेंगे। क्या? तो जो घर गृहस्थ में रह करके पुरुषार्थ कर रहे हैं वो 12 घंटे करते हैं तो बहुत अच्छा है। 12 घंटे कम है क्या? बाबा ने कहा 8 घंटा और हम 1.5 गुना कर रहे हैं, है? तो मन सदा मौज में रहता होगा? नहीं रहता होगा कि नहीं? तो बोला क्या फैसला हुआ? जब ये सब क्लियर हो जाए, क्या ये सब क्या क्लियर हो जाए तब इस सृष्टि पर आना। क्या क्लियर हो जाए? ये 5 तत्वों की जो तमो प्रधान सृष्टि है वो सात्विक बन जाए तब इस सृष्टि पर आना। क्या? तो 5 तत्वों का मूल क्या है, बीज कहाँ है? पांच सौ करोड़ आत्माओं का बीज कहाँ है? है? शिव बाबा, जिसे हम नाम दे रहे हैं कॉम्बिनेशन, निराकार का और साकार का। तो निराकार है आत्माओं का बीज, मनुष्यों का बीज। वो निराकार आत्मा जो सोमनाथ मंदिर में हीरे के रूप में दिखाई गई, उसका काम तो हो गया सन 2036 तक, समझने और समझाने का काम। 500 करोड़ आत्माएं समझ जाएंगी। तो 80 साल में अभी दुनिया को संदेश नहीं मिला तो फिर आगे के 20 साल में कैसे होगा? अरे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है या घट रही है? तो संभव नहीं हो सकता 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को ऊंचते ऊंच बाप, सुप्रीम बाप का संदेश मिलना, हेवनली गॉड फादर का संदेश कि वो हेवनली गॉड फादर इस सृष्टि पर हेवन बनाने के लिए आया। तो सारी मनुष्य आत्माओं को जब ये संदेश मिल जाता है कि वो हेवन बनाने के लिए आया और वो हेवन का वर्षा हमें भी चाहिए, कोई ऐसी मनुष्य आत्मा है जो ये न चाहे कि हमें सुख नहीं चाहिए, हमें तो दुख की दुनिया ही चाहिए? 500-700 करोड़ मनुष्यों में से कोई ऐसी आत्मा होगी? हैं? कोई नहीं होगी। माने कम से कम एक जन्म की जीवन मुक्ति हर मनुष्य आत्मा को चाहिए, एक जन्म के लिए सुख की दुनिया हर मनुष्य आत्मा को चाहिए। तो एक जन्म का सुख का वर्षा वो सभी को मिलता है। बाकी 21 जन्मों का वर्षा
आठ दस करोड़ को मिलता है, कितनों को? और चौरासी जन्म का बरसात है नहीं, पूरे चौरासी जन्म का बरसात सुख का किसी को मिल ही नहीं सकता। क्यों? अगर दुख नहीं होगा तो सुख की कोई वैल्यू नहीं होगी। दुख और सुख दोनों ही सृष्टि पर, रात भी है तो दिन भी है, ब्रह्मा का दिन भी है ब्रह्मा की रात भी है। तो ये ब्रह्मा का दिन लाने के लिए भगवान बाप इस सृष्टि पर तुम बच्चों को निमित्त बनाता है। ये 4.5 लाख बीज हैं जो सतयुग से आज से लेकर के कलयुग के अंत तक दुनिया में जितनी भी राजाइयां होंगी उन राजाइयों के बीज वहां तक भी चलेंगे। वो तो बीज रूप आत्माएं हैं जो राजयोग बल से क्या लेती हैं, राजाई की शक्ति प्राप्त करती है योग बल से, यथा राजा तथा प्रजा। तो इस सृष्टि पर हम कब लौटेंगे? 2036-37 के बाद तुरंत लौटेंगे या टाइम लगेगा? है? तुरंत आएंगे, तुरंत। पांच तत्वों की जो सृष्टि है, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश जो एकदम तमो प्रधान बन गए, वो सत्व प्रधान बन जाएंगे, बन जाएंगे। अरे बन जाएंगे, फू ऐसे होगा है? टाइम लगेगा, इसलिए बोला जब ये सब क्लियर हो जाएगा तब आना, फिर आकर के राज्य करना। राज्य सत्तो प्रधान प्रकृति पर करेंगे या ये जो तमो प्रधान प्रकृति विनाश काल में बन जाती है तब राज्य करेंगे? तो टाइम नहीं लगेगा। तो सत्व प्रधान प्रकृति कैसे बनेगी? है योग बल से। कैसा योग बल? मन मना भव, सब आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के उसी में प्रवेश कर जाएंगे। जो गीता में लिखा है क्या, अव्यक्त मूर्ति ना। कैसी मूर्ति? अव्यक्त मूर्ति। अरे मूर्ति साकार होती है या अव्यक्त होती है? साकार होती है। अव्यक्त माने जो न दिखाई पड़े, व्यक्त माने जो दिखाई पड़े। तो लिंग है साकार है या निराकार? फिर अव्यक्त मूर्ति कैसे है? हाँ, अव्यक्त इसलिए कि इंद्रियां हैं, लेकिन वो इंद्रियां ऐसी स्टेज बना ली है इंद्रियों वाले ने, ऐसी मनसा की स्टेज बनाई बुद्धि की कि वो इंद्रियां याद ही नहीं आती। इंद्रियों का रस, इंद्रियों का सुख अनुभव ही नहीं करता। तो जब अनुभव ही नहीं करेगा तो कर्म बंधन बंधेगा नहीं बनेगा। वो स्टेज दिखाई गई है कि उसमें लिंग में प्रकृति का भी बीज है, उस शरीर में जो लिंग रूप दिखाया गया, और उसमें आत्मा भी है, दोनों बरकरार हैं। 5000 वर्ष की सृष्टि में या नहीं बरकरार रहते हैं? दोनों बरकरार रहते हैं। और वो पांच तत्वों का जो शरीर है, जो शरीर मिट्टी का पुतला है, है या नहीं? प्रकृति का पुतला कैसा, जिसने सारी सृष्टि का विनाश करा दिया। जगत माता जैसा है या नहीं? अरे जगदम्बा जैसा है या नहीं? जगदम्बा क्या करती है? तो वो प्रधान बनती है, तो सारी सृष्टि का विनाश कराती है। वो तो चैतन्य मनुष्य आत्माओं का विनाश कराने के निमित्त है, लेकिन ये परम ब्रह्म पांच जड़ तत्वों का भी विनाश होता है। इतना विशाल रूप में नहीं रहेंगे वो सारे जड़ तत्व। योग बलते, योग माने प्यार, स्नेह, स्नेह के बल से सात्विक बनेंगे। जो यादगार है कि ऋषियों मुनियों के आश्रम में शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे। शेर बकरी जड़तुमयी बुद्धि वाले हैं या मनुष्यों जैसी चैतन्य बुद्धि है? है? जड़तुमयी बुद्धि होते हुए भी वो आत्माएं मनुष्यों के वातावरण के प्रभाव में आकर के मनुष्यों जैसे ही वातावरण की बुद्धि बन जाती है। तो ये 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं आत्मिक स्थिति में जब एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी एक बिंदु रूप में, तो जो पांच तत्वों का जो शरीर है पुतला बीज रूप में, वो सात्विक बनेगा या नहीं बनेगा? टाइम लगेगा। ऐसे ही नहीं सन 36 के बाद कृष्ण का जन्म हो जाएगा। अब और हड़कंप आने लगा, अभी तक तो 100 साल ही था, अब 100 साल की जगह और बढ़ा दिया। हाँ बोलो।
जो लास्ट में जाता है वो
सबसे पहले आएगा ही। वो ही आएगा। कब आएगा? जब उसका अपना शरीर सत्व प्रधान बने, लिंग सत्व प्रधान बने,
तो सबसे पहले
बन जाता है क्या? इतनी जल्दी बन जाता है? बन जाता है, है? बन जाता है, लिंग से अपने आप शरीर बन जाएगा। अरे वो साकार शरीर भी बर्फ में दबेगा या नहीं दबेगा?
सेकंड
के लिए दबेगा। एक सेकंड में 5 तत्व सत्व प्रधान बन जाते हैं।
सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है।
वो आत्मा के लिए बात है, जीवन के लिए बात है, जीवन मुक्ति की बात है, जीवित होने की बात है, 5 तत्वों की बात नहीं है। वो प्रैक्टिस करते करते आत्मा जब ऐसी योग की प्रैक्टिस में तीखी बन जाएगी कि 1 सेकंड में नीचे से ऊपर चली जाए, अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी, ऐसी स्टेज हो जाए, तब 1 सेकंड की बात। वो चैतन्य आत्मा की बात है, जड़ शरीर की बात नहीं है। जड़ शरीर योग की प्रैक्टिस करेगा? नहीं करेगा। हाँ, जड़त्व बुद्धि वाले जो प्राणी हैं, वो भी प्रेम का अनुभव करते हैं या नहीं करते हैं? है? करते हैं। हित आना हित पशु पक्षी जाना, जो पशु पक्षी जिनमें मन मनन चिंतन मंथन शील नहीं है, वो पशु पक्षी भी जानते हैं कि ये हमारा हित करने वाला है, ये अहित करने वाला नहीं है। ये ऋषि मुनियों का आश्रम ऐसा है जहाँ हमारा कोई कल्याण नहीं हो सकता। वो नजदीक भी जाएंगे मनुष्य के, ऋषियों मुनियों के, तो इसलिए नजदीक जाएंगे कि ये हमारे हितैषी हैं, हमारे शत्रु नहीं है।